शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचाल पांकुं लंकायते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। श्री राम अष्टोपनिषद नाम के शुरुआत में ये प्रार्थना है तो इसको हम गाएंगे। तो मैं पहले अर्थ बता देता हूँ। सीधा अर्थ राघवम जरहु कुल में आए हैं जो दशरथ महाराज के आत्मा जो है, जो मतलब जन्म लेना, आत्मा है ना शरीर या आत्मा, जिनसे जन्म लिया, जिनके पुत्र है अप्रमेयम, जिनकी शक्ति का कोई माप नहीं लगा सकता है, वो सीता के स्वामी है। वो रघुकुल में इससे जन्म हुआ है कि वहां के एक रत्न दीप है, वो जन्म कर रहे सारे रघुकुल को। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका एक लक्षण है कि उनके जो बाहु होते हैं वो जानों के आगे जाते हैं। तो अजान बाहु अरविंद जो है बलावताक्षम, अरविंद सॉरी उनकी जो आंखें है वो अरविंद दल के समान है। और रामम निशाचर विनाशकरम नमामि, जो राम है वो असुर जो होते हैं शास्त्रों में कई बार गोचर के बारे में बताया गया। तो ऐसे ही रात को जो कार्य करते हैं, रात को जो कार्यरत हो जाते हैं निशाचर, तो आजकल कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं रात रात काम करते हैं, तो वो भी निशाचर बन गए हैं। तो जो दिन में भी जागे होते हैं पर उनको ज्यादा शक्ति रात को मिलती है। निशाचर विनाश करम सॉरी विनाश करम नमामी, तो जिन्होंने निशाचरों का विनाश करके उनका उद्धार कर दिया, ऐसे भगवान रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राघवम दशरथात्मजम अप्रमेयम् अप्रमेयम् सीतापतिम् रघुकुलान्मय रत्नदीपम् अजान बाहुमरविंद दलायताक्षम् रामं निशाचर विनाशकरं नमामि श्री राघवं दशरथात्मजम अप्रमेयम् सीतापतिम् रघुकुलान्मय रत्नदीपम् अजानु बाहुमरविन्द दलायताक्षम् रामं निशाचर विनाशकरं नमामि श्री राघवं दशरथात्मजं अप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम् अजानुबाहुमरविन्द दलायताक्षम् रामं निशाचर विनाशकरं नमामि Anyone like to recite? कल हमने तीन भावों के बारे में चर्चा की, उसके पहले दो भाइयों के बारे में, सुग्रीव और वाली। तभी हमने कैसे गलतफहमी हो जाती है दो मित्रों में, दो भक्तों में, और तभी क्या करना चाहिए उसकी चर्चा की। फिर कल के चर्चा में हमने देखा कि कैसे भौतिक नैतिकता है उसका त्याग भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए, और विभीषण ने वो किया, उसके विपरीत कुंभकर्ण ने अपने भ्रातृ प्रेम के लिए भगवत प्रेम का त्याग कर दिया, उसका विनाश हो गया। तो आज हम चार भाई है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा थीम रहेगा स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ इमोशंस, कि हमारे जो भावनाएं हैं उनको कैसे हम दिव्य स्तर पर ले जा सकते हैं। तो जब प्रसंग में बाद में बताता हूं, पर जब भरत आ रहा होता है तो राम तो लक्ष्मण बहुत क्रोध होता है। लक्ष्मण बोलता है कि भरत सारी सेना लेके आ रहा है, तुमको मार डालना चाहता है, वो यहां पे आने के पहले ही मैं उसका वध कर दूंगा। और फिर बाद में पता चलता है कि वास्तव में भरत तो राज्य अर्पित करने के लिए आया था। तो उसके बाद में फिर वो सब चले जाते हैं, तो राम और लक्ष्मण जंगल में बैठे होते हैं अपने कुटीर में। तो लक्ष्मण बोलते हैं, भैया मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझे बहुत भरा बोला कहा भरत के बारे में। तो राम बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम भावुक हो, तो यू आर सेंटिमेंटल। तो फिर लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया क्या भावनाएं बुरी है, क्या भावुक होना बुरा है? तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं, वे कहते हैं कि भावनाएं तो जीवन को सौंदर्य प्रदान करती है, भावनाओं के बिना जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। पर भावनाएं इस तरह से जागृत होनी चाहिए कि वे हमें धर्म की ओर प्रेरित करते हैं और अधर्म की ओर नहीं। सो इमोशंस शुड बी अराउज इन सच ए वे दैट दे इंस्पायर अस टुवर्ड्स धर्म एंड नॉट अवे फ्रॉम धर्म। तो यह हम चर्चा करेंगे कैसे रामायण में दिव्य भावनाओं का प्रकटीकरण होता है, जो रामायण है उसके पात्रों में और उसके श्रवण के द्वारा हमारे हृदयों में भी। तो हमारे जो बुद्धि है वो विचार करती है, और हमारा हृदय जो है वो भावनाएं अनुभव करता है। तो जो सर्वांग विकसित व्यक्ति है उसमें दोनों जरूरी है, द हेड एंड द हार्ट, व्हेन बोथ आर डेवलप्ड लीड टू हैप्पीनेस। जो हृदय है और जो सिर है, ये दोनों जब विकसित है और दोनों समन्वय में है, बैलेंस में है, तभी व्यक्ति आनंदी जीवन जी सकता है। तो जो सहजिया लोग हैं वो भावनाओं का बहुत दिखावा करते हैं, पर वे तत्व ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं देते। पहले हम तत्व ज्ञान के परे चले गए हैं और फिर वो क्या है, उनकी जो भावनाएं हैं वो प्री मैच्योर है, वो परिपक्व होने के पहले ही वो ज्यादा प्रगतिशील भावना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गौर विशुद्ध अल्लाह बाबा इसके लिए उदाहरण देते हैं कि कोई गर्भवती स्त्री है, वो अगर गर्भवती है और भी गर्भ उसको संतान होने वाली है तो वो चीखती है, तभी क्योंकि गर्भ निकल रहा है पेट से अभी, तो उस चीख से वास्तव में वो चीख सुन के सबको आनंद होती है, आनंद होता है, उसको भी वास्तव में आनंद हो रहा है, उस समय दर्द हो रहा है, यार पुत्र अभी संतान होने वाला है मुझे, तो वो चीख सुनकर सब लोग आनंद जाते हैं और फिर उससे संतान उत्पन्न होता है। पर अगर उसको देखकर कोई और स्त्री है जो गर्भवती नहीं है और वो चीखने लगती है तो बाकी लोग बोले क्या आवाज करो, चुप हो जाओ, तो उस चीख से कुछ भी उत्पन्न नहीं होने वाला है। तो कहते हैं कि ठीक उसी तरह से शुद्ध भक्त जब भावनाएं प्रदर्शित करते अष्ट विकार होते हैं तो उससे भले ही वो दुखी लग रहे हो, कभी चैतन्य महाप्रभु हम देखते चैतन्य चरितामृत में इतने पीड़ित होते थे चैतन्य कृष्ण के विरह में, तो भौतिक दृष्टि से लगता है कि वे बहुत दुख में है, उनके हाथ कांपने लगते थे, कभी कभी उनके शरीर विकृत हो जाता था, पर वो सब भावनाएं वास्तव में उससे क्या हो रहा है, कृष्ण प्रेम जो संतान है वो क्या है, ये सब भावना अलग अलग भावना है और अंतिम भावना है कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम जागृत हो रहा है। तो पर उसके लिए वो गर्भवती स्त्री को पहले क्या करना पड़ता है, पहले अपने पति से समय करना पड़ता है, पति से गर्भाधान स्वीकार करना पड़ता है और फिर संतान को कई महीनों तक अपने पेट में संभाल के रखना पड़ता है, फिर वो एक संतान को उत्पन्न कर सकती है और तभी वो चीखे महत्वपूर्ण है, वो आनंददायक है वास्तव में। पर जो सहजिया लोग है ये अपने पति का संग करना मतलब गुरु से दीक्षा लेना और गुरु ने जो उपदेश दिया है वो अपने हृदय में संभाल के रखना, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और कृष्ण प्रेम से जागृत होगा। तो सहजिया लोग ये करते नहीं है और वो कृत्रिम रूप से भावनाएं दिखाते हैं। तो ये भावना है और हम देखते हैं कि हरदास ठाकुर की लीला में आता है, कैसे हरदास ठाकुर एक बार अष्टविकार में चले गए और वो एक तभी सपेरा था, वो भी वो सपेरा जब अपनी वाद्य बजा था उससे हरदास ठाकुर को कृष्ण का स्मरण आ गया और फिर उससे वो नाचने लग गए, वो भी उनके साथ बड़ा आनंद हो गया, फिर बाद में एक भैरव पिया वहीं पे आ गया और वो भी ऐसे ही करने लगा, तो वो सपेरा अपना डंडा उठाया उसको पीटने लग गया, पीटने लग गया, बोला अरे अभी तुम उस नाच रहे हो तुम ये भी पीट रहे हो, कुछ बोला ही नहीं, पीटते गए और भाग गया वहां से। तो जो भैरिया तो भैरव पिया होते हैं जो इस तरह से अनुकरण करते हैं वो उसके द्वारा हमारे गौड़ी संप्रदाय को बड़ा बुरा नाम मिला है। तो इसलिए इमोशंस हैव टू बी रेगुलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय थॉट, जो भावना है उनको नियंत्रण करना चाहिए और दिशा देनी चाहिए विचार के द्वारा, तत्व ज्ञान हमें होना चाहिए। पर सिर्फ विचार पर्याप्त नहीं है, सिर्फ चिंतन करते हैं पर कुछ भावनाएं उत्पन्न नहीं हो रही है, ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी में आके भगवद्गीता पे भागवतम पे पीएचडी कर देते हैं पर उनके हृदय में बिल्कुल भक्ति नहीं है भगवान के लिए, तो वो कृष्ण के बारे में विचार करते हैं और भक्ति का उद्देश्य भगवान के बारे में विचार करना, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्ण सर सर्वेदास वर्किंग कर, तो वो भगवान के बारे में विचार कर रहे हैं पर कुछ भावनाएं उत्पन्न नहीं हो रही उनके हृदय में, वो कृष्ण के बारे में ग्रंथ भी लिख सकते हैं। एक ऐसा ही तथाकथित पंडित है, उसने सोचा कि ये कृष्ण है, पहले विचित्र व्यक्ति है, वही व्यक्ति हम देखते हैं कि वृंदावन में इतने खेलकूद करते हैं, इतने नटखट करते हैं और फिर गोपियों के साथ लंपट के समान लीला करते हैं और फिर वह व्यक्ति भगवद गीता में बड़े तत्वज्ञानी बन जाते हैं और बड़ा बड़ा तत्वज्ञान हो जाते हैं, तभी फिर वही व्यक्ति बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाभारत के युद्ध में बड़े राजनीतिक बन जाता है जाते हैं। तो फिर उसने क्या अपना थियोरी निकाला कि वास्तव में एक कृष्ण नहीं है, तीन कृष्ण है और ये तीनों अलग अलग व्यक्ति है और उसमें उसने किताब लिख दिया अभी, तो ये क्या है, उसने विचार तो किया है कृष्ण के बारे में पर कुछ भावनाएं नहीं है। तो भावनाएं नहीं तो न केवल खुद के हृदय में भक्ति आती है, उसके ग्रंथ पढ़ने से किसी के हृदय में भक्ति नहीं आएगी। तो भावनाएं जरूरी है, तो भावना और विचार दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है वह महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि जो वैदिक शास्त्र है उनमें एक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन मतलब प्रगतिशील, उसमें एक स्तर है। तो इसका हम देखें कि आज प्रवचन मंत्र में देखें कैसे जो वैदिक शास्त्र में बताया गया है उसका सर्वोच्च जो पराकाष्ठा है वह भक्ति सामृत सिंधु में बताई गई है, पर हमारा प्रवचन रामायण पे होगा और अंत में हम भक्ति सामृत सिंधु पे आएंगे। तो जो वेद है वो भौतिक भावनाओं को धर्म से कैसे जोड़ना है ये दिखाते हैं। मतलब लोगों को आकर्षण है, क्या करना है हमको, हमको पैसा चाहिए, हमको स्त्री चाहिए। मैं बनारस गया था कुछ साल पहले, तो वहां पे हनुमान जी का एक मंदिर था, तो मैं दर्शन लेने चला गया, तो वहां पे ऊपर लिखा था तुम तो हो बाल ब्रह्मचारी मुझे दे दो एक नारी। तो क्या है, वहां पे लोगों के हृदय में बहुत भौतिक भावनाएं हैं, क्या स्त्री पे आकर्षण है, पर उसको किसी न किसी धर्म से जोड़ दो। तो उन्हें ये सारा जो कर्मकांड है वो क्या है, भौतिक भावनाओं को धर्म से जोड़ना। आपको विवाह करना है स्त्री से तो फिर एक यज्ञ करो, उसमें आप फेरे करो, और फिर उससे वो जो भावनाएं है वो आध्यात्मिक नहीं होते हैं पर वो भौतिक ही है, पर धार्मिक बन जाते हैं। उसके बाद में ये वेदों ने बताया कर्मकांड, उसके बाद में जो उपनिषद है उन्हें ये जो भावनाएं है उनका पूरा खंडन कर दिया है। क्या है ये स्त्री के प्रति आकर्षण, क्या है शरीर प्रति आकर्षण, सब कुछ शर्मभंभूर है, सारी भावनाएं ही बंधन का कारण है। तो भावनाओं को त्याग दो, अनासक्त हो जाओ, भावनाओं को शून्य कर दो, ये उपनिषदों में बताया गया है। और फिर उसके बाद में बहुत तत्वज्ञान है। अगर ईशोपनिषद पढ़ोगे तो ईशोपनिषद में सिर्फ आखिरी का एक श्लोक है अग्निनेर सुप्तारे आसमान, और उसके पहला एक श्लोक जो थोड़ा प्रार्थनात्मक है, पर बाकी सब जो है विचारात्मक ही है, चिंतन करो समझो। तो भावनाओं का त्याग कर दो। फिर उसके बाद में जो इतिहास है और पुराण है इनमें भावनाएं कैसे भगवान के संबंध से जोड़ सकते हैं ये दिखाया गया है। तो जो जो नकारात्मक भावनाएं है, भौतिक भावनाएं, उनको कैसे त्यागना, उनको पहले भगवान से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, ये कर्मकांड बताया। ज्ञान में कैसे, ज्ञान कांड में कैसा त्यागना वो बताया उपनिषद में, और फिर इतिहास और पुराणों में कैसे भगवान से जोड़ना ये दिखाया गया है। और इसके लिए अगर हम देखते हैं भगवद गीता में भक्ति का वर्णन है, पर जो भक्ति बताई गई है वो काफी हद तक इंटेलेक्चुअलाइज्ड भक्ति है। मतलब भक्ति में नहीं, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, अर्जुन की भौतिक भावनाएं उनको भ्रमित कर रही थी। तो इसीलिए भगवद गीता में जो भक्ति बताई गई है उसमें भौतिक भावनाओं से अनासक्त रहना उस पर बहुत जोर दिया है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो दुखेश अनुद्वेग नमना सुखेश स्पृहा। ये कई बार दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, फिर 53वें श्लोक में, फिर 5वें अध्याय के 20वें श्लोक, न प्रहृषेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य छ प्रियम, फिर 6वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में सुखे क्या है, था मानापमानव्यो सुख दुख समत्तुल्य था मानापमानव्यो। हर अध्याय में अगर भविदाय के देखे तो भौतिक जो हमें स्टिमुलाय मिलते हैं, भौतिक जो हमको अनुभव होते हैं उन्हें कैसे समन्वय बचाए रखना यह बताया गया है हर एक अध्याय में। तो भौतिक स्तर पर जो हमें जो अनुभव मिलते हैं वो 3 स्तर के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और अहंकार के स्तर पर। शरीर के स्तर पर हमको ठंडी गर्मी होती है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, जो 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये 3 प्रकार के हमको आते हैं अनुभव। शरीर के लिए आता है सुख और दुख, तो उनमें समान रहो, धनी भी तो सुबह उठ के स्नान करो, बहुत समान रहना है। फिर वो शीत उष्ण आ गया, फिर मन के लिए सुख और दुख आता है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है मुझे, ये ऐसा बर्ताव करता है अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बर्ताव करता अच्छा लगता है, सुख दुख। और अहंकार के लिए आता है मान अपमान, तो इन सब में समान रहो। तो भगवत गीता में जो भक्ति बताए गए हैं उसमें जो प्रधान जोर दिया गया है किस पे, कि भौतिक भावनाओं से विरक्त हो जाओ। और कुछ झलके मिलती है आध्यात्मिक भावनाओं की जब भगवान अपना प्रेम अर्जुन के प्रति व्यक्त करते हैं, खास करके ये 18वें अध्याय के 63वें, 64वें, 65वें श्लोक में बहुत सुंदर है। तो 63वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अभी मेरा संदेश पूरा हो गया है। एक्चुअली वो तभी क्या बोलते हैं कि चक्रवर्ती बाद उसके प्रताप बोलते हैं श्लोक के, श्लोक है इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया मृष्य तद अशेषे न यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, अगर मैंने तुमको ज्ञान बता दिया है तो मैं इस पे सखोल चिंतन करूं और फिर फैसला करो तुम्हें क्या करना है। यथेच्छसि तथा कुरु। तो यहां पे भगवान अर्जुन को आह्वान दे रहे हैं और भगवान ऐसे आवश्यक बोलते हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम चिंतन करो और चिंतन करने में कुछ तुमको समस्या आ रही है तो सारी भगवदगीता में वापस होने को तैयार हूं, पर तुम अच्छी तरह चिंतन करो। और फिर अर्जुन पूरे विचार में पड़ जाते हैं, दूसरे अध्याय में ये बोला, पांचवें अध्याय में वो बोला, सातवें अध्याय में बोला, अभी आठवें अध्याय में ये बोला, क्या करना है। और जब अर्जुन इतने सखोल विचार में पड़ जाते हैं तो भगवान के हृदय में जो प्रेम है अर्जुन के प्रति वो बाहर बहने लगता है और भगवान कहते हैं अर्जुन को तुमको ये सारा विचार करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं तुमको क्या करना चाहिए। सर्वगुह्यतम शास्त्रम वो भगवान बोलते हैं उनको कि मैंने पहले आपको इस अध्याय में गुह्य ज्ञान दिया, उसके बाद में गुह्यतर ज्ञान दिया और अभी मैं आपको सबसे गुह्यतम ज्ञान देता हूं। सर्व गुह्यतम भूय श्रृणु मे परम वच इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्व गुह्यतम भूय, सबसे गुह्य ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, क्या है ये, श्रृणु मे परम वच, ये मेरे परम वचन है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यही परम है। क्या है ये वचन और क्यों बोल रहा हूं, ये इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हितम, तुम्हारा हित चाहता हूं मैं और इष्ट तुम मेरे लिए बहुत प्रिय है। सो इष्टोसि मे, और वहां पे दृढ़, दृढ़ मतलब क्या, बहुत डगा रहता है जो कभी छूटता नहीं है, छोड़ता नहीं है ऐसे। तो भगवान बोलते हैं आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पर भगवान यहां पे बोल रहे कि मेरा तुम्हारे प्रति दृढ़ प्रेम है। चक्रवर्ती बात बोलते हैं कि कृष्णा इज सेइंग आई एम डिटरमिन्ड टू लव यू, भगवान बोलते हैं कि मेरा संकल्प है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मुझे कितना ही भूलो, कितना ही ठुकराओ, कितना ही मेरे आदेश का उल्लंघन करो, मैं तुम्हें प्रेम करना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे इतने प्रिय हो, इष्टों से मैं दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। और फिर उसके बाद भगवान ने बोला भू यह, दूसरी बार बोल रहा हूं मैं अभी, तो पहले क्या बताया था उन्होंने 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो श्लोक बताया था वह वापस दोहराते हैं भगवान। मेरा सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, मन मना भव मद भक्त मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि, यहां तक सही है। पर यहां उसके बाद में क्या, क्योंकि भगवान का प्रेम जो है वो बहते हुए बाहर आ रहा है, तो वहां पे पहले 9वें अध्याय में श्लोक 34वां माम एवैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानां मत्परायणः, अगर तुम इस तरह से युक्त हो जाओगे अपने मन के द्वारा, मन मन करके रसमान करके, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। पर यहां पे क्या बोलते हैं, मामेव यशसि सत्वं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। प्रतिजाने, प्रतिजाने ये शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, अनाउंस या प्रोक्लेम इंग्लिश में बोलते हैं, उसको घोषणा करना है तब प्रतिजाने शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो प्रतिजाने प्रियोसि मे, अर्जुन तुम जान लो मैं घोषणा कर रहा हूं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूं कि तुम मेरे पास जरूर लौट के आओगे अगर तुम ये करोगे। तो यहां पे हम भगवान का जो एक भक्त के प्रति प्रेम है वो दिखने को मिलता है हमको। तो ये जो है आध्यात्मिक भावनाओं का झलक है, पर यह जो झलक आध्यात्मिक भावना का हमको गीता में दिखने को मिलता है उसका विस्तार रूप हमें भागवतम में, फिर रामायण में, और खास करके चैतन्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में देखने को मिलता है। तो यही, इसलिए भक्ति क्या है ये वास्तव में श्रुति से समझना बड़ा मुश्किल है, और श्रुति से हमको तत्वज्ञान समझ में आ सकता है, पर जो भक्ति क्या है वो हमें केवल हम जब पुराणों का इतिहासों का अध्ययन करते हैं रामायण महाभारत का, तब भक्ति में कैसे भावनाएं आती हैं, और जब ये भावनाएं हृदय में आने लगती है तो फिर भौतिक भावनाएं हमेशा के दूर चली जाती हैं। तो भी प्रभु श्री रामचंद्र हम जानते हैं कि कैसे वे दशरथ के साथ गए, दशरथ के आदेश पर वे विश्वामित्र के साथ गए, और फिर उनका जो विवाह सीता माता से हुआ। और फिर तभी जनक महाराज ने कहा कि अभी हमारे दो परिवारों में संबंध जुड़ गया है, तो एक ही भाई का क्यों, मेरी एक और बहन, मेरी एक और बेटी है, और मेरा जो भाई है उसकी दो बेटियां हैं, तो आप चारों भाइयों से हम विवाह कर लेंगे। तो चारों का एक साथ एक के बाद एक विवाह हो गया। और तभी जब विवाह हो गया तो वास्तव में जो जब ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, तो जब वो पायों से निकला था यज्ञ से, तो उसका दो विभाग में दशरथ महाराज ने विभाजन किया था। एक विभाग तो उनकी जो सबसे सीनियर मोस्ट रानी थी, सबसे वरिष्ठ रानी थी कौशल्या, उनको दिया, और कैकेयी उनकी सबसे युवा रानी थी और वो बहुत सुंदर थी, तो इसलिए उनसे आसक्त थे। तो दूसरा विभाग उन्होंने कैकेयी को दे दिया, तो इसके बाद सुमित्रा कुछ भी नहीं मिला। तो उस समय सब ये रानियों में बहुत प्रेम था, तो फिर इसलिए दोनों ने अपने जो पायसम का हिस्सा था दोनों से निकाल के सुमित्रा को दे दिया, क्योंकि सुमित्रा को दो हिस्से मिले, सिर्फ दो पुत्र हुए। और ये जो है कैसे, वास्तव में चारों जो पुत्र हैं वो भगवान ही है, चारों भगवान ही है, वासुदेव संकर्षण प्रतिमा वृद्ध है, पर वो भूमिका कैसे कर रहे हैं, जो राम और लक्ष्मण है, राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान के सेवक है, भरत भगवान के परम भक्त है, और शत्रुघ्न भगवान के परम भक्त के सेवक है। तो सुमित्रा का यह सेवा भाव था कि उसके दो पुत्र हुए और एक पुत्र वो भगवत सेवक बन गया और दूसरा पुत्र भगवत भक्त सेवक बन गया। तो ये जो सुमित्रा है, ये सेवा भाव उनका जो था वो इस तरह से प्रकट किया कि दो पुत्र उत्पन्न हुए उनको, एक भगवान का सेवक, एक भगवान के भक्त का सेवक। इस तरह से उन्होंने लीला की। तो जब विवाह हो गया सब कुछ, फिर उसके बाद में कई साल तक अच्छी तरह से राज्य चल रहा था, दशरथ महाराज रहे थे, पर फिर दशरथ महाराज ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तो वास्तव में वह भी प्रसंग बड़ा रोचक है। एक बार वो अपने दरबार में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो अपने बाल सवार रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि एक बाल सफेद हो गया है। तो आजकल और कोई देखा बाल सफेद हो गया तो हेयर ऑयल लेके आओ जल्दी से, डाय कर लूंगा मैं बाल को। तो जब एक बाल सफेद हो गया उन्होंने देखा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ा हो रहा हूं, तो मुझे वानप्रस्थ रहना चाहिए, तो इसे मेरे पुत्र को राजा भी कर देना चाहिए। तो उसी तरह तुरंत फैसला कर लिया, और फिर जो ब्राह्मण से मशवरा किया, तो बोले कि अगर तुरंत आप ये राज्याभिषेक कर लोगे, तो बोले अगले एक दो दिन में ही आपको राज्याभिषेक करना चाहिए, तो फिर मंगल है, उसके बाद में और देर हो जाएगी तो अमंगल हो जाएगा, तो जो तभी जो मुहूर्त अच्छा नहीं है, जल्दी से जल्दी तुम्हें कर लेना चाहिए, तो फिर कई सालों तक तुम नहीं कर सकोगे। दशरथ महाराज सोचा कि जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, इसीलिए भरत और शत्रुघ्न उस समय राज्य में नहीं थे, तो उनको बुलाने के लिए समय नहीं था। और फिर उन्होंने जाके कौशल्या को बोला, और फिर कौशल्या की पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य करती, बोले कि उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत खुशखबरी देने आया हूं, तुम्हारे पुत्र का हम राज्याभिषेक करने वाले। कौशल्या, क्यों, मेरी तो इच्छा है तुम सालों सालों तक राजा बने रहो। और फिर तभी दशरथ महाराज सोच रहे थे कि वास्तव में ये कौशल्या बड़ी पसंद हो जाएगी कि उसका पुत्र राजा बनने वाला है, पर देखा कि कौशल्या कितना निस्वार्थ प्रेम है कि वो नहीं सोचे कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, सोचे कि मेरे पति सालों सालों तक राजा बने रहे। तो बोले, तुम्हारी इच्छा अच्छी है, पर मुझे भी वानप्रस्थ लेने का भी कर्तव्य है मेरा। और फिर उसके बाद में कैकेयी को यह संदेशा किसने दिया, मंथरा ने दिया। अब मंथरा बड़ा विचित्र व्यक्ति थी, मंथरा कैकेयी के माँ के समान थी, वो वास्तव में कैकेयी प्रदेश से आई थी, तो बचपन से वो कैकेयी की देखभाल करती थी, और क्योंकि वो कुबड़ी थी इसलिए वो लोगों के उपहास का टारगेट का उपहास के कारण बनती थी वो। तो इसलिए बचपन से उसको बहुत घृणा होती थी कि लोग बड़ा उपहास कर रहे हैं। पर कैकेयी जो थी किसी न किसी कारण कैकेयी को प्रिय बन गई थी और कैकेयी उसको अपनी माँ के समान ही मानती थी। एक नर्स थी बचपन से उनकी, तो बड़ा अच्छा संबंध था और वो बचपन से कैकेयी बहुत से इधर आ गई थी। और क्योंकि यद्यपि कैकेयी सबसे छोटी रानी थी पर कैकेयी दशरथ की सबसे प्रिय रानी बन गई थी। और यहाँ पे राजमहल में कैकेयी की अनेक दासियां थी पर उनमें से सबसे प्रिय दासी कौन थी? मंथरा। तो उसके कारण मंथरा राजा के सबसे प्रिय रानी की सबसे प्रिय दासी बन गई थी। उसके कारण सारे राजमहल को उसको विशेष आदर मिलता था और जिंदगी भर उसके पहले आदर हो रहा था तो भी आदर मिल गया था तो उस आदर से बड़ी आसक्ति हो गई थी उसको। और इसीलिए जब उसने सुना राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वास्तव में कभी राज्याभिषेक नहीं होने वाला था, पहले उसमें कैसा होता है पहले युवराज के रूप में घोषित किया जाता है फिर उसके बाद राज्याभिषेक हो जाता है। सो वी राम वॉज नॉट बी डिक्लेयर्ड द प्रिंस रीजेंट, जो अगला युवराज जो अगले राजा बनने वाले वो राम हो गए। तो तभी इतनी क्रुद्ध हो गई तुरंत वो, और क्रुद्ध होकर वो कह कह के जाकर मन को बहकाने लग गई। तो उसका खुद का वहां पे एजेंडा था, उसकी खुद की इच्छा थी कि मेरी जो आदर है मेरी इज्जत बनाई रहे, पर उसमें कैकेयी फंस गई। और यहां तक फंस गई कि कैकेयी बाद में बोले लोग कहते तुम्हें कुब्जा पर मैं सोचती हूं कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा जो कुरूप क्या बोलते उसको कुबेर है वो एक वास्तव में तुम इस कुबेर में कैसे दिखती हो कि सारी सारी बात हो जाती है। उसके बाद में बोलती है कि जब कोई सुंदर कमल का पुष्प होता है वो एक मधुर हवा की प्रवाह से जब झुकता है तुम उस तरह से झुकी हुई सुंदर लग रही हो, और तुम्हारा जो कुबड़ है जब भरत राजा बन जाएगा तो मैं तुम्हारा कुबड़ रेशम के कपड़े और सोने और चांदी और हीरो के माला से सजा दूंगी। तुमने इतना अच्छा मशवरा दिया मुझे। तो वास्तव में बात फिर कहके जाती है प्रभु श्री रामचंद्र के अपने दशरथ महाराज के पास, और वो जाती नहीं है, दशरथ महाराज को संदेशा भेज देती है। दशरथ महाराज पहले कौशल्या के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, फिर उनकी प्रिय रानी कहके उनके पास जाते हैं, वो उससे उनको समाचार देना है। तो बोलते हैं कि वो रो रही है, रुदन कमरे में है। दशरथ महाराज वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो गिरी हुई नीचे जमीन पर, उसके सारे जो बाल है बिखरे हुए हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो बड़े उद्विग्न हो जाते हैं। पहले से वो उसके प्रति आसक्त है और साथ साथ वह अभी आनंद के भाव में थे और रोने का क्या कारण है उनको पूछते हैं। वो बोलते हैं तो फिर कह के बोलती है कि तुमने मुझे दो व्रत दिए थे, याद है तुमको? बिल्कुल याद है, क्या चाहिए तुमको? तो क्या वचन देते हैं ये पूरा करोगे? तो फिर दशरथ महाराज जैसे कोई हिरण होता है, कोई जो शिकारी होता है वो अपनी बांसुरी बजाता है उससे फंस जाते हैं, तो धीरे धीरे दशरथ महाराज फंस जाते हैं। क्या तुम्हें व्रत देते हो? जरूर मैं व्रत देता हूं। और फिर दशरथ महाराज को इतनी श्रद्धा, वो आसक्ति जब हो जाती है ना किसी व्यक्ति के प्रति तो उस व्यक्ति के प्रति पूरी श्रद्धा आ जाती है हमको, और वो व्यक्ति को भी कोई गलत बोल नहीं सकता ऐसा लगता है। तो वो दशरथ महाराज व्रत लेते हैं, बोलते हैं जो राम मेरे लिए जान से प्रिय है मैं उस राम के नाम पे व्रत लेता हूं कि जो भी तुम मांगोगे मैं पूरा करूंगी। वो राम जिसका विरह मेरे लिए उतने से ज्यादा विकट है उस राम के स्मरण पे मैं व्रत लेता हूं कि जो भी तुम मांगोगे मैं पूरा करूंगी। वो राम जो मेरा धन मेरी संपत्ति मेरा राज्य मेरी पत्नियां उन सबसे मुझे प्रिय है उस राम के नाम पे मैं व्रत लेता हूं कि जो भी तुम बोलोगे मैं पूरा करूंगा। तो तीन बार व्रत लेते हैं वो, और तीनों बार राम के नाम में व्रत लेते हैं। तो पूरी तो कह के जब सुनते हैं तो मन ही मन हंसने लगते, बोले अभी मेरा पूरा चाल पूरा हो गया। वो बोलती है कि मेरे दो व्रत है, राम को वनवास में भी 14 साल के लिए और भरत को राजा बना दो। तो दशरथ महाराज सुनते हैं तो सिर पकड़ लेते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि मानो सत्य है, सपना है, खौफनाक सपना है, कुछ बोल नहीं पाते है, आंखें बड़ी हो जाती है। और जब कह के घूर के उनको देख रही होती है दशरथ महाराज गिर के बेहोश हो जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद जब होश पे आ जाती है वो देखते कह के उसी निष्ठुर भाव से उनकी ओर घूर रही है, बोलते ये क्या हो गया तुम्हें? आज तक तो राम से इतना प्रेम करती थी कि राम तुम्हारे पुत्र के समान था, जितना प्रेम तुम्हारा भरत के लिए था उतना ही राम के लिए था, और राम ने भी तुम्हें हमेशा प्रेम के समान ही समझा है, क्या हो गया तुम्हें, क्या पागलपन है। तो कैकेयी बोली कि मेरे पुत्र भरत को बाजू को रखकर तुम कैकेयी की कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनाना चाहते थे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो दशरथ महाराज बोले राम तुम्हें अपने मां के समान समझता है, राम और दशरथ में कोई फर्क नहीं है, राम और भरत में कोई फर्क नहीं है, मैं राम के बिना जी नहीं सकता, राम को राजा बनने दो। तो कहके बोले राम और भरत में कोई फर्क नहीं है तो भरत को राजा बनने दो, उनकी बात को उल्टा कर देती है। तो दशरथ महाराज को अभी तक लग रहा है कि कुछ सब खौफनाक सपना ही है, पर धीरे धीरे उनको समझ लगता है कि सत्य है। रोने लगते हैं, बोलते हैं कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता, अगर तुम चाहती हो कि भरत राजा बनना है तो भरत को राजा बनने दो, पर राम को भी राज्य में रहने दो। तो मंथरा ने पूरा कैकेयी को ब्रेन वॉश कर दिया है। मंथरा बोले होते कैकेयी के दशरथ ऐसे ही बोलेंगे कि राम को भी रहने दो पर भरत को राजा बनने दो, पर ये कभी चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक राम राज्य में रहेगा तब तक जो अयोध्यावासी है वो भरत का अभिषेक होने देंगे, और साथ साथ जब तक राम राज्य में है वो भी जानते थे कि ये भाइयों में बहुत प्रेम है, भरत भी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए कैकेयी ने बोला होता है मंथरा को, कैकेयी ने बोला, मंथरा ने कैकेयी को बोला होता है कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, दो बार मांगने के एक ही नहीं। तो बोलते तुमने अपना व्रत लेके मुझे दो वर दिए हैं, तुम्हें ये वर पूरे ही करने होंगे। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता, अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह से व्रत मांगने वाली हो तो मैं कभी ऐसे व्रत नहीं देता। तो अभी कह रही बोले तुम किस कुल में जन्म लियो, उस रघुकुल में जिसके राजा हमेशा अपने व्रत पूरा करते हैं, क्या तुम अपने कुल का नाम कलंक में मिला दोगे, मिट्टी में मिला दोगे, क्या तुम अपने कुल पे कलंक बन जाओगे अपना व्रत पूरा न करके। उस तरह से उनको बहुत डांटने लगते, भर्सना करने लगती है, और दशरथ महाराज पूरा विवश हो जाते हैं। ये जो होता है पूरे दिन भर, वो दिन में जो सभा होती है उसमें उन्होंने फैसला किया था कि राम का राज्याभिषेक करने का, शाम हो जाती है तो वो कौशल्या को जाके बताते हैं, और फिर उसके बाद में वे कैकेयी के महल में आते हैं, और रात भर दशरथ महाराज होश में आते हैं बेहोश होते, होश में आते हैं बेहोश होते, और फिर जब सुबह होने लगती है तो फिर तभी वहां पे बाहर जो दशरथ महाराज के दूत है सुमंत्र वहां पे आते हैं, क्योंकि जो सारे यज्ञ वगैरह करने हैं उसकी आयोजन को फाइनलाइज करना होता है। और फिर तभी वो देखते हैं कि दशरथ महाराज जमीन पे गिरे हुए हैं, पूरे कपड़े बिखरे हुए हैं, उनके कपड़े और बाल बिखरे हुए हैं, मुकुट गिर गया है, आंखों से आंसुओं के निशान आ रहे हैं चेहरे पे। उनको तुरंत लगता है कुछ तो भी बहुत ही अपशकुन है। तो कैकेयी बोलते हैं कि दशरथ महाराज अपने पुत्र राम से मिलना चाहते हैं। तो वो दशरथ महाराज क्या, वो देखते दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे होते, फिर अपने थोड़ा सा हिलाते, वो राम को बुला जाते हैं। तो राम उस समय अपने माँ के साथ होते हैं, तो वो वहां से निकलते हैं, रथ में बैठते हैं और आते हैं, और जब अंदर आते हैं महल में तुरंत उनको भी हृदय में बहुत दुख होता है, ये देख करके दशरथ महाराज जमीन पर गिरे हुए हैं इस तरह से, इतना दयनीय परिस्थिति में। बोलते कैके से पूछते हे माँ, हे माता, क्या समस्या है, महाराज की ये परिस्थिति क्यों हुई है, पिताश्री की ये परिस्थिति क्यों हुई है। तो कैके बड़ी निष्ठुरता से बोलती है तुम्हारे कारण। ये एक और वज्र रामचंद्र के हृदय पे, मेरे कारण। बोलते ऐसे पहलियों में मत बोलो, क्या बोलो, क्या बात है। बोलते है महाराज ने एक ऐसा व्रत लिया है जो तुम्हें पूरा करना है, और उनको डर लग रहा है कि तुम वो पूरा नहीं करोगे, इसीलिए वो इस परिस्थिति में है। देखो कैसे निष्ठुर तरह से भावनाएं वो उत्पन्न कर रही है। तो बोले तो श्री रामचंद्र बोलते हैं कि मेरे पिता के जो वचन है वो मेरे जान से ज्यादा प्रिय है, जो भी वचन है मैं तुरंत पूरा करूंगा, क्या है बताओ। पिताजी नहीं बता रहे तो आप बताओ मुझे। फिर वो मुझे दो वचन दिए थे उन्होंने बहुत पहले और वो अभी पूरे किए हैं। वो है तुम्हें वनवास में जाना है 14 साल और भरत को राजा बनना है। तो राम बिल्कुल भी कुछ विचलित होने की भावना दिखाते नहीं है, तो इतनी छोटी सी बात है। बोलते मैंने तो आज तक आपको मेरी मां के समान ही समझा था और मैंने भी सोचा था कि आप मुझे अपने पुत्र के समान समझती हो, पर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि तुमने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि अगर तुमने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया होता तो तुम खुद ही आदेश दे देते मुझे जंगल में चले जाओ, और मैं चला जाता। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें हमारे पिताजी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो मैं आज ही चला जाऊंगा। और या दशरथ महाराज थोड़े आधे बेहोश आधे होश में सुनते हैं और राम राम कहकर रोने लगते हैं। और फिर तभी श्री रामचंद्र निकलते हैं और वो रथ में आए होते हैं, उनके ऊपर जो छाता होता है राजा अभिषेक राजा का छाता वो होता है, सबको बाजू को कर देते हैं और पादत्राण चप्पल पहने बिना वो चलने लगते हैं। वो सब जो राजमहल के सेवक होते हैं वो सब विचलित हो जाते हैं, वैसे चलते हैं वो और सीधा जाते हैं अपनी मां के महल में। और उस समय वास्तव में कौशल्या, वो पहले सीता के महल से आ रहे होते, सॉरी माँ के कौशल्या के महल से नहीं, उसमें रात भर कौशल्या तपस्या कर रही होती है, वो विष्णु का नाम गान कर रही होती है और फिर वो उपवास कर रही होती है। और जैसे ही राम आते हैं तो वो बोलते हैं, वो स्वागत करती है राम का, आओ। और उनको बड़ा आसन होता है सुंदर, बैठो इस पर, मैं तुमको कुछ विष्णु का प्रसाद देती हूँ, आज बड़ा मंगल का दिन है। तो भगवान राम अपने हाथ से उस आसन को स्पर्श करते हैं, सिर में हाथ लगाते हैं और बोलते हैं कि अभी इस आसन पर बैठने के मेरे दिन खत्म हो गए हैं, अभी मैं दुर्वग्रास के आसन पर बैठूंगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। और फिर वो पूरी कहानी बता देते हैं कौशल्या को। जब कौशल्या ये पूरी कहानी सुनती है तो वो लगभग बेहोश होकर गिरने लगती है। तो प्रभु श्री राम उनको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि इतने सालों तक मुझे कोई पुत्र नहीं था और फिर बड़ी तपस्या करने के बाद, बड़े यज्ञ करने के बाद मुझे पुत्र मिला, और वो पुत्र भी कैसा, जो तुम्हारा जैसे पुत्र था, और ऐसा पुत्र जो सारे अरमान और सारे सपनों की पूर्ति करता था। और जब मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिल गया तो मेरे जीवन में दो शोक थे, एक शोक था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है और दूसरा शोक था कि एक छोटी रानी है उसके कारण राजा मेरे और दुर्लक्ष कर रहे हैं, पर तुम्हारे संग के कारण मेरे सारे दुख दूर चले गए, अभी एक ही क्षण में सब कुछ चला जाएगा, तुम भी चले जाओगे और एक छोटी रानी जो है उसका राजा उसका पुत्र राजा बन जाएगा, तो हमेशा वो मेरा उपहास करते रहेगी। तो बोले तो तुम नहीं जा सकते। वो बोले कि इस तरह से, तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते मेरे पिताजी का आदेश मेरे लिए सर्व महत्वपूर्ण है, मुझे जाना पड़ेगा। तो कौशल्या बोलती है कि जिस तरह से एक पिताजी का आदेश एक पुत्र के लिए महत्वपूर्ण है, उसे मां का भी आदेश महत्वपूर्ण है, और मैं आदेश देती हूं कि तुम जंगल नहीं जाओगे। तो श्री रामचंद्र हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, माता मैंने तुमसे सीखा है आज तक कि हमेशा अपने पिता के आदेश का पालन करो, क्या आज तुम मुझे अपने जिंदगी भर के सीख के खिलाफ जाने को बोलोगी। तो फिर कौशल्या बोलती है ठीक है, अगर तुम जंगल में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि एक स्त्री का प्रधान कर्तव्य है अपने पति के प्रति, और फिर बाकी सब कर्तव्य आते हैं अपने पुत्र के प्रति, अपने सारे रिश्तेदारों के प्रति। आज तुम्हें अपने पिताजी की, आज दशरथ महाराज को तुम्हारी बहुत जरूरत है,
बोले क्या जरूरत है, वो तो कैके के साथ सुखी रहेगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो राम हाथ जोड़ते बोले तुम भी जानती हो हमारे पिता के हृदय को, हम तुम इस तरह से अगर बोलोगी, तुम इस तरह से उनको ठुकरा दोगी तो कौन आश्रय रहेगा। मैं मेरे पिता के महल से ही आ रहा हूं और मैं जानता हूं कितने दुखी थे वो अपने वचन से बद्ध है, वो कोई आनंद से जंगल में नहीं भेज रहे है। इस समय जब वो इस तरह से पीड़ित है तो तुम उनकी अर्धांगिनी हो, तुम्हें उनको आश्रय देना है। अगर तुम उनका उपहास करोगे तो हमारे पिता को आश्रय कौन देंगे। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम पिताजी के साथ रहो। और ये 14 साल ऐसे ही चले जाएंगे, मैं यूं ही जाऊंगा और यूं ही आ जाऊंगा वापस। तो फिर कौशल्या रोने लगती है, कुछ बोल नहीं पाती है। और उसी बीच ये सारे समाचार है ये सारे महल में फैल जाते हैं। तो तभी वास्तव में लक्ष्मण भी आ जाते हैं, लक्ष्मण को समाचार मिल जाता है कि राजन उन्होंने बुलाया है उनको। तो वो दशरथ महाराज के महल में आते हैं तो वहां पर राम दिखते नहीं है, तो उनको जानकारी मिलती है कि कौशल्या के महल में आए, तो वहां पे आ जाते हैं वो और बाहर से सब कुछ सुन लेते हैं। और तभी वो बोलते हैं हे राम तुम कहीं जंगल में नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और तुम ही राजा बनोगे। तो फिर तभी देखने लगते उधर, फिर वो बोलते हैं कि वास्तव में जो काम वासना है वो व्यक्ति को अंधा बना देती है, और व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जब वो काम वासना से अंधा हो जाता है तो फिर उसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे पिता कैके के मुंह में कामान भी हो गए हैं और उनकी बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कौशल्या के अंदर पूरा आशा जागृत हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारा जो भाई है वो सत्य कह रहा है। तो ऋषि रामचंद्र बोलते हैं कि वास्तव में हमारा जो कर्तव्य है, एक पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के आदेश का पालन करना, पिता का आदेश उन्होंने क्यों दिया है उसके बारे में विचार करना नहीं है। कि नहीं, ये बोलते ये धर्म नहीं है तुम्हारा। और फिर उन्हें बड़ा संवाद होता है, बोलते हैं कि वास्तव में आज तक दशरथ महाराज ने कभी किसी को बताया नहीं कि उन्होंने कैके को 2 व्रत दिए थे, तो आज ये कहानी कहां से निकली, ये सब मुझे लगता है षड्यंत्र है तुम्हें तुम्हारे राज्य से वंचित करने के लिए, और ये षड्यंत्र कभी भी यशस्वी नहीं होगा। अगर कोई भी तुम्हारे राज्याभिषेक में रोक लगाएगा तो वो मेरे तीरों से यमराज चला जाएगा, और भले ही ये हमारे पिता बीच में आ जाए तो मैं उनको भी यमराज भेज दूंगा। तो ये सुनकर ऋषि राम बड़े गंभीर जाते हैं, तुम्हारे तीर हमारे पिता के पास पहुंचने के पहले मेरे शरीर से भेद कर जाने पड़ेंगे, फिर तुम ये राज्य का भोग कर सकते हो। सुनकर सारा जो राम लक्ष्मण का क्रोध होता है वो एकदम दब जाता है अंदर, देखो मुझे राज्य का कोई इच्छा नहीं। बोलते कि वास्तव में ऋषि रामचंद्र बोलने लगते हैं कि तुम जानते हो कि कैके हमसे कितना प्रेम करती थी, कैके का जो प्रेम था वो एक निर्मल नदी के समान बहता था हम सब के प्रति, भरत के प्रति, शत्रुघ्न के प्रति, तुम्हारे प्रति और मेरे प्रति। तुम जानते हो ये प्रेम कितना निर्मल और कितना हमेशा बहता था। तो लक्ष्मण बोलते हैं वही मैं सोच रहा हूं, एक रात में गंगा सूख कैसे गई। फिर वो बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें नियति से होती है और वो हमारे समझ के बाहर है। जब कैके के वचन से ऐसे कैके के मुंह से ऐसे वचन सुने तो मैं तुरंत समझ गया कि ये नियति की इच्छा है, और अगर यही हमारे दावत में लिखा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो लक्ष्मण बोले जो केवल निकम्मे लोग होते हैं वही अन्याय को सहन कर लेते हैं और उसको दावत कह देते हैं, नियति कह देते हैं। जो शक्तिशाली लोग हैं वो अन्याय का प्रतिकार करते हैं अपनी पूरी शक्ति से और न्याय की प्राप्ति करते हैं। न्याय यह है कि तुम्हारा राज्य अभिषेक होना चाहिए, ये क्षत्रियों का धर्म है कि वो न्याय के लिए युद्ध करे, न केवल नपुंसकों के समान अन्याय को नियति बोलकर स्वीकार कर ले। तो यहां पे पूरा तत्व ज्ञान का बातचीत होने लगता है और सारे राजमहल के लोग हैं वो भी आके सुनने लगते हैं। और फिर ऋषि रामचंद्र बोलते हैं कि यहां पे नियति क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, ये सब मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है और मुझे वो आदेश पूरा करना है। तो वास्तव में ये जो नियति है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नियति हम जाते हैं ना किस्मत बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरी किस्मत ही फूटी है मैं क्या करूं। तो जब वसुदेव देवकी के साथ कंस के रथ में जा रहे होते तो अचानक कंस आकाशवाणी सुन लेता है और क्या करता है, देवकी के बाल पकड़ लेता है, उसका सिर काटने का तैयार हो जाता है। तो तभी अलग अलग आर्ग्यूमेंट देते हैं वो वसुदेव उसको उनको रोकने के लिए। और एक आर्ग्यूमेंट जो देते हैं, एक तर्क बोलते हैं कि अगर तुम्हारे नियति में लिखा हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो फिर नियति को कौन टाल सकता है, तो अगर नियति को टाला नहीं जा सकता है तो तुम दुष्कर्म क्यों कर रहे हो, तुम ट्रिपल दुष्कर्म कर रहे हो। एक तो एक स्त्री को मार रहे हो, वो स्त्री जो तुम्हारी बहन है, और वो स्त्री जो तुम्हारी बहन है उसके विवाह के दिन पर तुम मार रहे हो, तो ये बड़ा दुष्कर्म तुम कर रहे हो। जो नियति टाली नहीं सकती है उसके लिए तुम दुष्कर्म क्यों कर रहे हो। तो अभी यहां पे अगर आप हम देख सकते हैं कि वसुदेव ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर नियति में लिखा है कि देवकी का वध होने वाला है तो होने वाला है, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, वो नहीं सोच रहे। वो कंस को बोल रहे हैं कि नियति में अगर तुम्हारी मृत्यु लिखी है तो आने वाली है, पर खुद ये नहीं सोच रहे कि नियति में लिखा है तो देवकी की मृत्यु हो, मैं क्या कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि क्या है फर्क क्या है, वसुदेव का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का संरक्षण करे, तो नियति का नाम लेके कर्तव्य को कभी छोड़ते नहीं है। और उसके विपरीत जो कंस है वो अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हैं, कर्तव्य को त्याग रहे हैं। उनको बोल है कि तुम नियति को याद करो, कुछ फर्क नहीं कर सकते तुम। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में नियति प्रधान नहीं है, किस्मत या दौलत प्रधान नहीं है, कर्तव्य प्रधान है। तो हमें हमेशा कर्तव्य पे ज्यादा रहना चाहिए। तो कई बार हम प्रचार करते हैं और और प्रोग्राम को जाते हैं, कोई लोग आते ही नहीं है, तो क्या हमें सोचना चाहिए कि ये मेरी किस्मत ही फूटी है, कोई भक्त बनने वाला है, ऐसा ही है। तो हो सकता है नहीं हो सकता है, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि मैंने फॉलो अप किया कि नहीं, मैंने पब्लिसिटी की है कि नहीं। एक बार एक एक प्रोग्राम के लिए प्रभुपाद जी को बुलाया गया और प्रोग्राम में कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया प्रैक्टिकल प्रोग्राम में। तो फिर जो भक्त थे वो बोले प्रभुपाद दिस इज कृष्णा अरेंजमेंट, ये कृष्ण का योजना है। प्रभुपाद जी बोले दिस इज नॉट कृष्णा अरेंजमेंट, दिस इज योर वेस्ट मैनेजमेंट, ये तुमने माया जैसे हो गया, इसका ऐसे हो गया। तो प्रभुपाद जी ऐसे कभी नहीं बोला करते कि ओ नियति में होगा तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे, भारत में प्रचार करने का प्रयास, 40 साल में प्रचार करने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी क्या बोला, नियति नहीं है, शायद मेरे भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करूं, तो छोड़ दो। नहीं, प्रभुपाद जी कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्य क्या है, प्रचार करना है। तो ठीक है, यश नहीं मिला तो कुछ और ट्राई करो। पहले वो किताब मैगजीन लिख रहे थे, फिर ग्रंथ लिखने लग गए, फिर कुछ शिष्य बनाने लग गए, फिर अमेरिका जाने का प्रयास करने लग गए, अलग अलग चीजें प्रभुपाद जी ट्राई करते थे। और एक चीज यशस्वी नहीं हुई तो प्रभुपाद जी हमेशा वही करते रहे, ऐसे नहीं है। अगर एक जगह हम जा रहे हैं और प्रोग्राम यशस्वी नहीं हो रहा है तो एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता जाएगा और वहां पर लोग आ नहीं रहे, लोग गंभीर बन नहीं रहे, तो फिर हम कहीं जाके प्रोग्राम करने लगे, ऐसा नहीं है। उस दिन अगर प्रोग्राम के लिए गए और कोई भी नहीं आएगा तो प्रभुपाद जी बोला करते कोई भी नहीं आया तो हम दीवारों का प्रचार करेंगे। पर इसका मतलब नहीं है कि हम ऐसे जगहों पर जाएंगे वहां पर सिर्फ दीवार है वहां पर प्रचार करेंगे, नहीं, मतलब हमारा कर्तव्य करेंगे, फल मिले या न मिले। पर इस तरह से हम हमारी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से फल भी मिल सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी भारत को छोड़कर अमेरिका में चले गए। तो वैदिक संस्कृति का मतलब ये नहीं है, अगर कोई मान लीजिए कुकिंग कर रहा है और कुकिंग करते समय सोचता है भगवान की इच्छा होगी तो ये स्वीट राइस अच्छा होगा, तो ये नहीं तो फिर ये स्वीट राइस है बिटर राइस बन जाएगा, खट्टा राइस बन जाएगा, ये नहीं। जब हम कर्तव्य कर रहे हैं तो पूरे ध्यान पूर्व करना चाहिए, तभी कर्तव्य अच्छे से नहीं कर रहे तो नहीं बोल सकते ये नियति है, ये आज स्वेटर अच्छा क्यों नहीं बना, नहीं कि किस्मत ऐसी है, तुम्हारी किस्मत थी कि तुमको खट्टा राइस खाने को मिलने वाला है, ऐसे नहीं बोल सकते हम। पर जब हम हमारा कर्तव्य पूरी तरह से कर लेते हैं और उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो समझ जाइए कि ये नियति का कार्य है ये। तो फिर तभी हमें देखना चाहिए कि मैं तो यह कर्तव्य करता रहूंगा पर किस तरह से कर्तव्य करूं ताकि उसका फल भी मिल सके। तो वैदिक संस्कृति जो है ये नियति प्रधान नहीं है, ये कर्तव्य प्रधान है। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी जो लोग होते हैं ये गरीब लोगों को अन्नदान देते हैं, और उन्होंने अमेरिका में यूरोप में क्या ऐसे प्रतिपादन प्रोपेगेंडा कर दिया है कि ये भारत के ब्राह्मण लोगों ने इतना गरीब लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है कि ये गरीब लोग सोचते हैं कि हमारी जो गरीबी है ये हमारी नियति है, ये इस तरह से हमें दुख भुगतना ये हमारी किस्मत है, और जब हम हमको अन्न देते हैं तो अन्न में स्वीकार करने में डर होते, बोलते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा है कि भूखे मरना चाहिए, अगर हम आपसे अन्न स्वीकार कर लोगे तो हम हमारी किस्मत में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसलिए वो अन्न भी स्वीकार नहीं करते। तो वास्तव में ऐसे कभी हुआ है कि नहीं पता नहीं, मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई उत्सव होता है तो उसमें बहुत अन्न का वितरण होता है, और गरीब लोगों को अन्न मिलता है, अमीर लोगों को अन्न, सबको अन्न मिलता है। यहां तक कि 17-18वीं सदी में जब मैकॉले भारत में गए तो बोले कि सारे भारत में मैंने एक चोर नहीं देखा है, एक भिखारी नहीं देखा है, गरीब लोग है पर कोई भी चोर नहीं है, कोई भी भिखारी नहीं है। हम देखते 200 साल पहले भी लोग अपने दरवाजे घर के खुले रखते थे और तभी भी लोग सुख से रहते, अभी दरवाजे बंद करते हैं, लॉक करते हैं, बोल्ट करते हैं, चेन लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं, फिर भी सो नहीं पाते, इतनी चिंता लगी रहती है। तो पॉइंट यह है कि नियति ऐसे ऐसे अगर कोई नियतिकरण ऐसा सोच रहा है तो वो गलत है। नियति का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल असहाय बन जाए, कुछ कार्यहीन बन जाए, नहीं। नियति का मतलब क्या है कि हमेशा हमें कर्तव्यनिष्ठ रहना है, और हमारा कर्तव्य करते हुए फल नहीं मिला तो समझना चाहिए कि ये नियति है कि फल नहीं मिला, पर फिर भी मैं तुम्हारे कर्तव्य में डगा रहूंगा और जब भगवान की इच्छा होगी तब फल मिल जाएगा, पर कभी भी कर्तव्य नहीं छोड़ना है। उत्साह निश्चय धैर्य भगवान मदद, तो हमेशा ये भक्त को अपनी सेवा के लिए उत्साह रखना है और सेवा के फल के लिए धैर्य रखना है, मतलब जब भगवान की इच्छा होगी तो फल मिल जाएगा, पर जो सेवा है वो तो हमेशा उत्साह से करनी है। और प्रभुपाद जी देखते हैं कि एक भक्त भी अगर आता था, प्रभुपाद जी इतने उत्साह से प्रचार करते थे, हरीश उनके ट्रांसलेशन डायरी में लिखते हैं कि वो अपने रूम में बैठ के अपने पर्सनल सर्वेंट से बात कर रहे हैं, या फिर कुछ 10-15 गेस्ट से बात कर रहे हैं, या एक बड़े प्रोग्राम में 1000 लोगों को बात कर रहे हैं, सब क्या उतने ही उत्साह से प्रचार करते थे प्रभुपाद जी। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी को आनंद होता था अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ज्यादा लोगों को भगवान का संदेश मिलता है इसके कारण, पर उनका उत्साह भगवान को पसंद करने के लिए था, इसीलिए हमेशा उसी उत्साह से वो सेवा कर रहे थे। तो इसीलिए लक्ष्मण को भगवान ने क्या बोला कि ये नियति की बात नहीं है, कर्तव्य की बात है, मेरा कर्तव्य क्या है कि मेरे पिता के आदेश का पालन करना, और मैं जरूर करूंगा वो। और फिर लक्ष्मण अवाक रहे, कुछ बोल नहीं पाए, वो समझ गए कि अभी राम बात नहीं मानने वाले हैं। तो ये कई बार आता है कि लक्ष्मण बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, फिर राम उनको तर्क से शांत कर देते हैं, फिर राम बोले अभी मैं सीता के महल में जाके बताऊंगा। तो सीता उनका स्वागत, सीता ने सोचा था कि जब दशरथ ने बुलाया है तो कुछ रीति रिवाज पूरे करने हैं, उसके लिए बुलाया है। तो जब राम आते हैं तो वो भी सीता भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, ये मोर लीला कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी धार्मिक कार्य में लगी हुई है। और फिर वो बोलते हैं जब वो राम को देखते हैं तो राम के चेहरे का रंग चला गया है और इज लुकिंग पेल, मायूस लगा, तो बोलते क्या हो गया, और फिर सारी कहानी बताते हैं। वो सारी कहानी बताते हैं तो बोले हे सीता, अभी मैं जंगल जाने की तैयारी कर रहा हूं, तो तुम यहीं पर रहो और तुम हमारे माता और पिता की तरह सेवा करो। तो सीता कहने लगती, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जंगल में आऊंगी, जंगल तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है। वहां पे कई श्लोक में वर्णन है रामायण में कि जंगल में क्या क्या खतरे होते, बोलते हैं जंगल में खौफनाक जानवर होते हैं, जंगल में राक्षस होते हैं, जंगल में कभी कभी खाने को कुछ मिलता नहीं है, कंदमूल खाने पड़ते हैं, जंगल में कभी कभी पीने को पानी नहीं मिलता है, जब भूख लगती है तो सिर्फ अन्न की याद करके खुद को संतुष्ट करना पड़ता है, सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है, रात को जब सोते हैं तभी कहीं से सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, जब पानी पी जाता है तो वहां पे मगरमच्छ हो सकता है, हमेशा कीड़े काटते रहते हैं, ये जंगल तुम्हारे जैसे कोमल कन्या स्त्री के लिए नहीं है। तो सीता माता बोलती है कि जंगल में जो भी खतरे हो, आपसे विरह जो है, आपके बिना रहना, ये सबसे बड़ी दावाग्नि के समान है मेरे लिए, ये मेरे लिए असंभव है। तो तुम भावुक मत हो जाओ, ये भावनाओं की बात नहीं है, 14 साल का सवाल है ये, तुम यहीं पे रहो और हमारे माता पिता की सेवा करो। तो सीधा देखते कि राम मानने वाले नहीं है, बोलते कि जब मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे और सौंप दिया तो उन्होंने बताया कि हमेशा सुख में हो या दुख में हो अपने पति की सेवा करो, अपने पति के साथ रहो, तो क्या तुम मुझे मेरे पिता के आदेश का पालन नहीं करने दोगे? तुम इतने दृढ़ता से अपने पिता का आदेश पालन कर रहे हो पर मुझे मेरे पिता का आदेश पालन नहीं करने दे रहे हो। तभी राम अवाक हो जाते, ठीक है तुम तैयारी करो, तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी सोने जवाहरात है, वो सब दान में दे दो और चलो मेरे साथ। तो जब तो राम भी अपने जो पर्सनल संपत्ति होता है, व्यक्तिगत संपत्ति, दान में देने लगते हैं। तो जो अयोध्या वासी को पता चलता है कि राम दान में दे रहे हैं तो आनंद होता है क्योंकि दान मिलने वाला है, पर दूसरी ओर से दुख हो जाता है कि राम जाने वाले हैं और उसके कारण दान दे रहे हैं। तो जब लक्ष्मण वहीं बाहर रुके होते हैं, सुनते कि सीता जाने वाली है, इसे लक्ष्मण बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो राम बोलते वनवास तुम्हें नहीं दिया गया है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं तुम्हारे और सीता की रक्षा करूंगा। राम बोलते हैं तुम्हारा कर्तव्य कि तुम्हारी पत्नी यहीं पर है, तुम्हारे माता पिता यहीं पर है, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारे मेरी माँ, तुम्हारे माँ और हमारे पिता सबकी सेवा करो। वो सेवा करने के लिए महल में बहुत से लोग हैं पर तुम्हारे साथ आने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। तो लक्ष्मण गिर जाते हैं राम के पैर में, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। फिर भगवान राम मान जाते हैं और फिर वो सब तैयारी करने लगते हैं आने के लिए। तो फिर लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, वो आती है, बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि मुझे जंगल में तुम्हारा देखभाल करने के लिए समय नहीं मिलेगा। बोलते हैं नहीं, तुम्हें मेरी देखभाल नहीं करनी होगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। जब तुम जंगल में जाओगे कंदमूल फल ढूंढने के लिए, लकड़ियां लाने के लिए, जब उसके बाद में तुम शाम को आओगे तो मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हें जो भी तकलीफ हो रही जंगल की उसे छोड़ देने का प्रयास करूंगी। तो इस तरह से तुम निश्चिंत रूप से सो पाओगे, आराम कर पाओगे, मैं तुम पे बिल्कुल बोझा नहीं बनोगे। लक्ष्मण बोलते हैं मेरे लिए सोने का समय कहाँ होगा, दिन भर तुम्हें पानी न जल अन्न और लकड़े ढूंढ रहा होगा और रात भर मैं निगरानी दे रहा होगा, तो तुम्हें वहां पे आने की जरूरत नहीं है। तो फिर उर्मिला रोने लगती है, वो बोलती है कि मेरी बहन सीता को अपने पति की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मुझे अपने पति की सेवा से वंचित तुम क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं मेरे बहन से अभागी हूं? तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि वास्तव में मेरे दो कर्तव्य है, मैं राम का छोटा भाई हूं इसीलिए मेरे बड़े भाई की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और मैं दशरथ महाराज का पुत्र हूं तो एक पुत्र के रूप में पिता की सेवा करना भी मेरा कर्तव्य है। तो मैं जब यहां पर महल में रहता था तो मैं दोनों कर्तव्य पूरे कर रहा था, पर अभी मैं जंगल में जाऊंगा तो मैं दोनों कर्तव्य नहीं कर पाऊंगा, तो तुम मेरी सेवा जरूर कर सकती हो, तो यहां महल में रहो और दशरथ महाराज की और मेरी मां की सेवा करो, इस तरह से तुम मेरा कर्तव्य पूरे कर रही हो, मेरा सेवा कर रही हो। तो उर्मिला शांत हो जाती है और फिर भरत महाराज कहते हैं, सॉरी लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा एक और निवेदन है तुमसे कि तुम जब दशरथ महाराज और हमारी सब माओं की सेवा कर रही होगी तो कृपया तुम आंसू मत बहाओ। तो ये सुन के उर्मिला रोने लगती है, बोलती है कि मैंने मुझे तुम्हारे साथ आने का अधिकार तो तुमने छीन लिया पर तुम्हारे विरह में रोने का अधिकार भी छीन लोगे तुम मुझसे? बोलते ये बात नहीं है, तुम यहां पर रह रहे हो किस लिए, ये हमारी माताएं और पिता की सेवा करने के लिए, और वो मेरे विरह से बहुत दुखी रहेंगे, राम के विरह से, सीता की तरह से दुखी रहेंगे, और तुम्हें उनके दुख से सांत्वना देनी है उनको, और अगर वो देखेंगे तुम भी दुखी हो तो उससे वो और दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हारे जो आंसू है वो तुम अपने हृदय में अंदर रखो और आंखों से कभी बाहर आने मत दो। तो उर्मिला मान जाती है। फिर लक्ष्मण जब राम लक्ष्मण और सीता ये सब दशरथ महाराज के महल में जाते हैं, वहां पे कैकेयी रुकी है, और वे सब दशरथ महाराज का आशीर्वाद लेने आते हैं। दशरथ महाराज जब दशरथ महाराज देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी हम आशीर्वाद लेने आए हैं। राम बोलते हैं कि मैं जंगल में जा रहा हूं और सीता और लक्ष्मण मेरे साथ आ रहे हैं। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि नहीं, तुम जंगल में नहीं जा सकते। वो बोलते हैं कि हे राम, तुम एक षड्यंत्र रचाओ और मुझे कैदी बना लो और तुम खुद को राजा बना लो, मैं आदंग से जेल में चले जाऊंगा और फिर कहके मुझे कुछ नहीं बोल सकती है। तो कहके वही पे कर रहे। तो श्री राम अपने हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं कि मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है, मुझे इसी में आनंद है कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं, मैं अभी जंगल में चले जाऊंगा। तो जब दशरथ महाराज देखते कि जंगल में जाने के लिए जरूरत जो है उनको कोई अभी रोक नहीं सकता है, तो बोलते हैं ठीक है जंगल में जाना है तो जाओ, पर एक दो दिन के लिए तुम रुक जाओ, मेरे साथ रहो, एक दो दिन हम साथ में रहेंगे और फिर तुम जाओ जंगल में। और फिर प्रभु श्री राम बोलते हैं कि जो करना ही है उसमें विलंब क्यों करें, जितने दिन तक मैं जंगल में रहूंगा तब तक कहके ही संशय करेगी कि मैं जाने वाला हूं कि नहीं, और जब तक मैं जंगल में जाऊंगा तब तक आपने जो व्रत लिया है वो पूरा नहीं हुआ होगा, तब उतना उस समय तक आपका जो नाम है उस पे कलंक रहेगा, तो कृपया मुझे अभी जाने दीजिए। तो फिर दशरथ महाराज बोलते हैं ठीक है, अगर तुम जंगल में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और मेरे सारे सैनिक, मेरे सारे मंत्री साथ में आएंगे और हम जंगल को अयोध्या बना देंगे, और कहके यहां पर अयोध्या के अरण्य में रूप में रह सकती है, चलो हम सब साथ में जाते हैं। दशरथ महाराज उठ जाते हैं, उतने समय से वो गिरे हुए नीचे निष्क्रिय तो उत्साह हो जाते, चलो हम साथ में चले जाते। तो कहके चिखने लगते, नहीं, जब तुमने वादा नहीं था मुझे तो मेरे धर्म को तुमने राज्य दिया था, जंगल नहीं दिया था, इस राज्य से राम कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, यहां तक कि वो अपने राज वस्त्र भी नहीं पहन सकता है, उसको राज वस्त्र निकालने को बोलो, वो अभी जंगल में रह रहा है तो शायद राज वस्त्र की क्या जरूरत है। तो ये सुनकर दशरथ महाराज बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, वो बोलते हैं अगर मैं वचनबद्ध नहीं होता तो मैं इसी समय तुम्हारा वध कर देता, अगर तुम मेरी स्त्री नहीं होती, मैं तुम्हारा वध नहीं करता हूं, पर मैं आज से तुम्हारे मैं मेरी पत्नी के रूप में ठुकरा देता हूं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरा और तुम्हारा आज से कोई संबंध नहीं है, और वो बोल के गिर जाते हैं नीचे। तो इसी बीच वहां पे कौशल्या सुमित्रा भी आ गई है, तो कह के कुछ भी नहीं बोलती है, और फिर वो जो ट्री बार्क होते हैं, जो पेड़ के पेड़ से बनाए गए वस्त्र होते, पेड़ के बाहर के जो और इस बार्क चाच के छाछ से बनाए गए होते हैं, छाक से बनाए होते हैं, वो वस्त्र पहनाते हैं। तो जब सीता माता को वस्त्र पहनने होते तो दशरथ तो राम और लक्ष्मण इसके पहले विश्वामित्र के साथ जंगल में गए, तभी उन्होंने वस्त्र पैसे वस्त्र पहने हैं, दूसरे को ऐसे वस्त्र पहने हुए देखा है, पर सीता ने कभी ऐसे देखा ही नहीं है। तो वस्त्र देखती है और पता नहीं कैसे पहनना है, और जब सीता के कोमल शरीर पर वो ऐसे वस्त्र पहनने का जो नौबत आ गई है देखकर, अभी तक वशिष्ठ जो राज ऋषि है वो शांत रहते, वो धीर स्तर नम हुई जाती है, पर वो भी क्रुद्ध हो जाते, बोलते हैं हे कैकेयी, क्या तुम्हारा हृदय पत्थर से बना है, ये सीता का कोमल शरीर पर ये पेड़ के छाक के वस्त्र पहने हुए देखकर क्या तुम्हारा हृदय टूट नहीं रहा है, राम को वांछित कर दिया, अपने पिता को दुखित कर दिया, सारे अयोध्या को दुख कर मैं दबा दिया, इससे तुम्हारे संतुष्ट नहीं हुए, सीता को भी तुम इस वस्त्र में देखना चाहती हो। तो कहके कुछ भी नहीं बोलती, कहके का हृदय जो होता है वो पूरा पत्थर जैसे बन गया होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति होती है भरत को राजा बनाने के लिए। तो फिर ऋषि रामचंद्र खुद सीता को वो वस्त्र पहना देते हैं और फिर वो निकलते हैं, और वो जब निकलते हैं तो सुमंत्र अपने रथ में उनको बिठाते हैं, और वो जब जाने लगते हैं तो दशरथ महाराज तक होश में आ जाते हैं, ओ राम रुको रुको चिल्लाने लगते हैं, और फिर भगवान सुमंत्र को बोलते हैं जल्दी से चलो जल्दी से चलो। तो राम रुको, जब देखते हैं दशरथ महाराज की राम नहीं सुन रहे तो बोलते सुमंत्र रुको, चिल्लाते। अभी सुमंत्र अभी बहुत ही दुर्भ दुविधा में पड़ जाते हैं, राजा बोल रहे रुको, राजकुमार बोल रहे जल्दी चलो, बोलते सुमंत्र बोलते मैं क्या करूं अभी, राजा बोल रहे मुझे रुको। तो परशुराम बोलते हैं कि वास्तव में मेरा जाना तो जरूरी है, जितना देर मैं यहां पर रुकूंगा उतने समय तक पिताजी को और दुख होगा, तो इसीलिए तुम चलो जल्दी चलो। पर राजा ने मुझे बोला है कि रुको, तुम उनको बता देना आने के बाद कि तुमने सुना नहीं उनको बोलते हुए, रुको चलो अभी। तभी सुमंत्र चलने लगते हैं। तो सारे अयोध्या में जब ये समाचार फैल जाता है कि राम जा रहे हैं, तो राम इतने सबके प्रिय होते हैं, तो बोलते हैं कि हम सब राम के साथ जाएंगे। और सब अयोध्या के जो पुरुष होते हैं, स्त्रियां जाती है, सब पुरुष जाने लगते हैं राम के पीछे, और जाने लगते हैं। राम बोलते हैं रुक जाओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। बोलते नहीं, हम सब आपके साथ आएंगे। और कोई भी राम की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। जब राम चल रहे होते तो कई बूढ़े लोग होते, कुछ ब्राह्मण होते, वो भी राम के साथ जा रहे होते, और वो तेज से चल नहीं पा रहे होते। और वो जब राम बोल रहे तेज से रथ चलाओ, तो क्या होता है जब रथ निकलते हैं तो दशरथ महाराज दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और फिर क्योंकि वो वृद्ध होते हैं और मायूस भी होते, तो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं तो सब कौशल्या सुमित्रा चिल्लाते हैं और वहां पे दौड़ते हुए आ जाते हैं। और जब तक वो उठ के देखते हैं तो रथ दृष्टिगोचर हो गया है, और फिर फूट फूट के रोने लगते हैं, राम राम राम। तो ये सब अयोध्यावासी राम के पीछे जा रहे हैं जितना हो सकता है उतना दौड़ते हुए। और राम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काफी वृद्ध ब्राह्मण है, तो राम को पहले से जब ब्राह्मण चल रहे हैं तो रथ में जाना अच्छा नहीं लगता है, और मैं दौड़ रहा हूं इसीलिए ब्राह्मण को दौड़ लग रहा है। इसे बोलते हैं तुम रथ रोक दो, मैं इन ब्राह्मण से चलूंगा। और फिर वो चलते चलते जाते हैं, और फिर वो जब नदी के तट पे आते हैं तो वहां पे रुकते हैं, वहां पे हम सो जाएंगे बोलते हैं। और फिर सुबह जल्दी उठते हैं और सुमंत्र को बोलते हैं कि तुम चलो यहां से। फिर रथ को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे इतने सारे रथ के निशान पहियों के निशाने होते कि कहां गए वो नागरिक को समझ में ना आए। और फिर वो नदी के पार करके रथ से चले जाते हैं, और जब पार चले जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं सारे नागरिक अयोध्यावासी, और इतने दुखी होते हैं, राम कहाँ चले गए कहाँ चले गए, कहीं भी नहीं मिलते, और बड़े मायूस होकर वापस आ जाते हैं वो। और फिर जब नदी के पार चले जाते हैं तो वहां पे गुहा नाम का राजा का राज्य होता है, जो निषाद होता है। तो उसको जब पता चलता है कि कोई अपने रथ में आ रहा है, तो कौन है बोलता है वो, पता नहीं कोई राजकुमार लग रहा है। फिर वो वास्तव में गुहा और प्रभु श्री रामचंद्र के पहले से मैत्री होती है, विश्वामित्र मुनि के आश्रम में जब होते थे उनकी मुलाकात हुई होती है। तो फिर वो बोलते हैं, जब वो देखता है कि राम आए हैं तो बड़े आनंद से उनको प्रणाम करता है, और बोलता है क्या हुआ। तो फिर राम कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये पूरे रामायण में राम एक भी बार कैके के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलते, और यहां तक कि जब प्रभु श्री रामचंद्र रावण का वध कर देते हैं, तब सभी देवता वहां पे आते हैं, और ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि दशरथ महाराज यहां पे आए हैं, दशरथ महाराज तभी उनको दिखाई देते हैं। दशरथ महाराज बोलते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, क्या वर मांगना चाहते हो, कुछ वर मांगो। तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र का इतना अदोष दृष्टा है, वो क्या वर मांगते हैं, हे पिताश्री, जब कैकेयी ने मुझे वनवास भेजा था तब आपने कैकेयी को अपने पत्नी के रूप में ठुकरा दिया था, कृपया कैकेयी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र का हृदय है, सो अटरली नॉन फॉल्ट फाइंडिंग, कैकेयी को कभी दोष नहीं देते है वो। कल कैकेयी की ओर से दशरथ महाराज से प्रार्थना करते हैं। और जब सीता माता वापस आती है वनवास से 14 साल के बाद, सीता माता जब आके बताती है ये सारा प्रसंग, तो कैकेयी के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वास्तव में कैकेयी का हृदय परिवर्तन उसके पहले हो जाता है, पर भगवान का हृदय ऐसा है कि किसी में दोष नहीं देखते हो। अब हम तो जानते हैं पहले से कि अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा बोला जाता है तो हमारे कर्म के कारण हो रहा है, फिर भी हम दूसरे को दोष देते हैं। भगवान का कुछ कर्म है नहीं, फिर भी भगवान दूसरे को दोष नहीं दे रहे, सच्चा इतना आदर्श है भगवान का बर्ताव। फिर गुहा बोलता है आपका अयोध्या से आपको निकाला गया है, तो आप मेरे राज्य के राजा बन जाओ और 14 साल यहीं पे बिटा लो। बोलते हैं कि नहीं, मेरा जो मुझे वन में जाने को बोला है, मैं किसी भी राज्य का राजा नहीं बन सकता, मैं जंगल में जाके रहूंगा। और फिर और जब वापस उनको हमें बाहर करनी होती है, पहले जो है तो तभी गुहा के राज्य में जब होते हैं तो वो सुमंत्र को बोलते हैं, हे सुमंत्र अभी तुम चले जाओ। सुमंत्र जो है ये भगवान राम की लीला में अक्रूर के समान थोड़ी सी भूमिका है उनकी। जैसे अक्रूर कृष्ण को वृंदावन से ले जाते हैं और ये जो सुमंत्र है राम को अयोध्या से ले जाते हैं। पर वास्तव में सुमंत्र की परिस्थिति और भी विकट है, क्योंकि अक्रूर को कृष्ण को वृंदावन से लेकर आने के बाद वृंदावन वासियों के क्रोध का या दुख का सामना नहीं करना पड़ा, वो तो चले गए। पर सुमंत्र को राम को वहां से बाहर लेके आने के बाद वापस अयोध्या में जाना था। तो सुमंत्र बोले कि हे, तो रामचंद्र बोलते हैं सुमंत्र को कि अभी तुम जाओ वापस, अभी हम यहां से हम पैदल ही जाएंगे। सुमंत्र बोलते हैं मैं नहीं जा सकता, मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगा। तो तुलसी राम बोलते हैं कि वास्तव में आप मेरे पिता के समान ही है, वास्तव में मंत्री है नीचे है, पर प्रभु श्री राम सबको आदर दे, आप मेरे पिता के समान ही है और हमारे सारे राजमहल में हमारे पिता जैसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति आपके अलावा और कोई नहीं है, तो पिताजी को आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, कृपया आप जाओ। तो उसके पहले क्या होता है, जब कौशल्या सुमित्रा को पता चलता है कि राम जाने वाले हैं, तो बोलते हैं हाँ ये क्या अमंगल आ गया है कि जब दशरथ महाराज भी बेहोश हो जाते हैं, कैके को ठुकरा देते हैं और बेहोश हो जाते हैं, ये क्या अमंगल आ गया है। तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं इसमें मुझे कुछ भी अमंगल नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे पिताजी के वचन को पूरा करने का मौका मिल रहा है, मुझे मेरी माँ कैके की इच्छा को पूरा करने का मौका मिल रहा है, मुझे मेरे भाई भरत को राजा बनाने का मौका मिल रहा है, मुझे खुद जंगल में जाकर ऋषि मुनियों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, हर ओर से मुझे फायदा ही फायदा दिख रहा है, इसमें आप शकुन क्या है, अमंगल क्या है। आजकल लोग पॉजिटिव थिंकिंग फोर्सेस करते हैं, भगवान राम का क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, हर जगह सकारात्मक देख रहे हैं। पूरे रामायण में सारे प्रसंग में हम देखते हैं कि हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र दूसरों के क्या भावनाएं होगी उसके बारे में विचार कर रहे हैं, दूसरों को और उस मंत्र को बोलते हैं एक और चीज कि जब तक तुम जाके संदेश नहीं दोगे कि मैं जंगल में चला गया हूं, तब तक कैके के मन में संशय रहेगा, और मैं नहीं चाहता कि कैके मेरे कारण मेरे पिताजी के प्रति संशय रखे, तो इसलिए आप कृपया आप चले जाओ। तो ऑलवे हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र सोचते रहे दूसरों के बारे में कि दूसरे क्या विचार कर रहे हैं, उनको दुख कैसे कम से कम दे। और फिर उस रात जब सो रहे होते हैं प्रभु श्री रामचंद्र रोने लगते हैं, पहली बार रोते हैं वहां पे। तो लक्ष्मण वहां पे आते, सीता आप क्यों रो रहे हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र क्या बोलते हैं कि अभी मेरे पिताजी इतने दुख में हो गए, इतने मायूसी में हो गए, और एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता का दुख हो उसमें सहभागी हो, उस दुख को हटाने का प्रयास करें, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि न केवल मैं मेरे पिताजी का दुख दूर नहीं कर सकता, पर मैं मेरे पिताजी के दुख का कारण बन गया हूं, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। तो और रोने लगते हैं, ये नहीं सोच रहे कि मेरे पिताजी के आसक्ति के कारण मुझे जंगल में भेज दिया गया, ऐसे कि मैं मेरे पिताजी के दुख को हटा नहीं पा रहा हूं। और सुमंत्र को तीसरा कारण देते हैं वो कि क्या क्यों जाओ, बोलते हैं कि अभी हमारे जो पिताश्री है वो वास्तव में ये सारी घटनाओं के कारण बहुत भाव विभोर हो गए होंगे, वो भावुक हो गए होंगे, तो वो राज्य का कारभार नहीं संभाल पाएंगे, तो यह देखकर हमारे राज्य के शत्रु हैं वह हम पे आक्रमण कर सकते हैं, इस समय आपके राजनैतिक जो बुद्धि अनुभव उसकी बहुत जरूरत अयोध्या में। तो इस तरह से अलग अलग कारण सुमंत्र विवश हो जाते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है। फिर दशरथ महाराज जब देखते हैं वो उसी रास्ते की ओर देखते रहते हैं कई घंटों तक, फिर रात को किसी तरह सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं वापस उसी रास्ते की ओर देख रहे होते, और जब वो देखते हैं सुमंत्र का रथ वापस आ रहा है तो बड़े आनंद से आते, बोले राम वापस आ गया, राम वापस आ गया, और बाद में देखते हैं ये खाली रथ आ रहा है, तो पुनः उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। पर सुमंत्र जब वर्णन करता है पूरा कैसे वो जंगल में रहे थे, जमीन पे सो रहे थे, जब महाराजा हृदय पूरा टूट जाता है। और फिर अगले दिन जब राजमहल के से दशरथ महाराज को उठाए जाते हैं, परिषद महाराज उठते ही नहीं है, उठते ही नहीं, उठाने का प्रयास करते हैं, वो वाद्य बजाते हैं, गीत गाते हैं, फिर भी उठते नहीं है। और जब उठते नहीं है देखते हैं वो, तो कौशल्या उनके बाजू में ही होती। कौशल्या याद रखते कि राम ने बोला था कि तुम अपने पिता के साथ रहो, तो कौशल्या वहां पे अंदर जाती है और देखती है दशरथ महाराज के हाथ को, पैर को स्पर्श करती है तो पूरा ठंडा पड़ गया और वो रोने लगती है, चीखने लगती है और सब पापा दासी आ जाते हैं, वो सब रोने लगते हैं और दशरथ महाराज चले गए होते हैं। तो तभी जो वशिष्ठ वाले होते हैं वो टेम्परेरी राजा का कार्यभार संभालने लगते हैं और फिर वो तुरंत सभा बुलाते हैं, बोलते हैं कि भरत को बुलाना चाहिए और जो राजा है वो उनको ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उनका पुत्र न हो। चार पुत्र है पर एक भी पुत्र नहीं है जो उनके अंतिम संस्कार कर सके, तो इसीलिए उनके जो शरीर है वो तेल में संभाल के रखना चाहिए, जब भरत आ जाएगा तो फिर भरत को अंतिम संस्कार करने को बोलना चाहिए। तो तुरंत तो संदेश भेज देते हैं भरत को कि तुम आ जाओ, सब कुछ ठीक है पर कुछ कार्य के लिए तुम्हारी जरूरत है। तो तुरंत भरत कुछ वास्तव उनको बताते नहीं है कि तुम्हारे पिता ये सब हो गया है, तो भरत तुरंत आते हैं वास्तव साथ, उनके साथ बहुत सारे सैनिक होते हैं तो उनको बहुत समय लगता है, लगभग 10 दिन लग जाते हैं आने को। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी अयोध्या भूत नगरी जैसे हो गई है, जो मंदिर है मंदिर में कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई कीर्तन नहीं गाया जा रहा है, जो जानवर है वो कोई इधर उधर दौड़ नहीं रहे, आसमान में कोई पंछी उड़ नहीं रहे, कोई व्यक्ति ने अपने दुकान भी खोला नहीं है, घरों में दिए जल नहीं रहे हैं, जो रास्ते हैं वो साफ नहीं है। ये देखकर ही उनको बहुत डर लगने लगता है। अब जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमेशा जब भी मैं बाहर से आ रहा था मेरे पिताजी स्वयं मेरे स्वागत करने के लिए होते थे, पिताजी क्यों नहीं है। वो जाते हैं अपने सीधे अपने माँ के महल में, वहां पे कैकेयी बैठे होते, तो कैकेयी जैसे अपने पुत्र को देखती है वो आलिंगन कर लेती है, आओ भारत तुम्हारा स्वागत है, सारा राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बोलते तो तुम्हारा, और फिर बोलते मेरे पिताजी कहाँ है, बोलते और बड़े निष्ठुर प्रश्नों के साथ वो बोलती है कि जो गति इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को मिलनी ही होती है एक दिन, वो गति तुम्हारे पिता की हो गई है। तो भरत महाराज सुनते हैं तो हतप्रभ हो जाते, बोले क्या हो गया, कैसे हो गया, और फिर रोने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए तो राम उनके साथ में था और राम उनके साथ में होकर उनके आखिरी वचन सुन सका पर मैं उनके आखिरी वचन नहीं सुन सका। हे माँ कृपया राम को बुलाओ ताकि मैं, मेरे पिताजी ने जरूर मेरा स्मरण किया होगा, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या आखिरी वचन बताया मुझे बताओ, राम को बुलाओ ताकि राम बता सके। बोले मैं बताऊंगा, मैं बताती हूं तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने आखिरी वचन क्या बोले। बोलते हे राम तुम वापस कब आओगे, ऐसे वचन आखिरी उन्होंने बोले। तो ये उस रात को सोने के पहले उन्होंने बोले थे। तो इससे पूरा भरत महाराज मोहित हो जाते, बोलते क्या मतलब, क्या राम उनके साथ में ही थे, राम कहां गए थे। और फिर कैकेयी पूरी कहानी बता देती है क्या हुआ, एक षड्यंत्र रचा गया जिससे कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार था राज्य था उससे छीन लिया जा रहा था, तो मैंने वो राज्य तुम्हें ला दिया है और मैंने राम को वनवास में भेज दिया है। और बड़े आनंद के साथ बोल रही है अभी भरत सारा राज्य तुम्हारे लिए है, अभी तुम भरत नहीं हो, तुम भरत महाराज हो। तो ये सब सुन रहे भरत, भरत को पूरा विश्वास नहीं हो रहा, बोल दे तुम क्या बोल रही हो, मेरे भाई के होते हुए मैं कभी राज्य स्वीकार नहीं कर सकता, ये तुमने कैसे कल्पना कर ली कि मैं मेरे भाई के प्रति ईर्ष्या कर सकता हूं, और ये क्या पागलपन है कि तुमने मेरे भाई को जंगल में भेज दिया, मेरे भाई को जंगल में भेज दिया, मेरे पिता को परलोक में भेज दिया और तुम सोचती हो मैं ये राज्य स्वीकार करूंगी, कभी संभव नहीं है। और फिर मैंने तो वास्तव में सब तुम्हारे लिए ही किया, तुम्हारे कल्याण के लिए किया मैंने, ये मेरे लिए नहीं किया तुमने, ये तुमने अपने स्वार्थ के लिए किया है। अगर तुम स्थिर नहीं होती तो मैं तुम्हारा वध कर देता अभी, पर आज से मैं तुम्हें मेरी मां के रूप में ठुकरा देता हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सारे ब्रह्मांड के विनाश करने वाले जो देवी है महाकाली, वो महाकाली हमारे कुल में अवतारित हुई है हमारे कुल का विनाश करने के लिए, और वहां से तुरंत निकल जाते हैं। और ये भरत महाराज का बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार हम कुछ गलती करते हैं और दूसरे हमें दोष देते हैं तो भी बुरा लगता है, पर अगर हमने गलती की नहीं है और हमें दोष देते हैं तो उससे और बुरा लगता है। तो जैसे ही भरत महाराज का पूरा दिमाग घूम रहा होता है, वो क्या करे, बोलते किसके पास जाए, तो उनके लिए कौशल्या भी उनके मां के समान ही होती है। तो वो कौशल्या के पास जाते हैं, कौशल्या जाते तो कौशल्या देखती है उनको, बोलते आओ भरत, अभी तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई, सारा राज्य तुम्हारा ही है, पर अभी महाराज भरत मैं तुमसे एक निवेदन है, मैं तुम्हारे राज्य में एक तुम्हारी नागरिक हूं, तुम्हारे मां ने मेरे पुत्र को बाहर भेज दिया जंगल में, मैं इच्छा कर तुमसे निवेदन करती हूं कि तुम भी मुझे उसी जंगल में भेज दो। सुनते हैं भरत, वो सीधा कौशल्या के पैर में गिर जाते हैं, बोलते हैं तुम जानती हो मेरे हृदय को, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी राम को बाहर भेजने की, जंगल में भेजने की, जो मेरी मां ने किया वो ना तो उसने मुझे बताया था ना मेरी इजाजत ली थी, मैं इसके तुम तो मेरे हृदय को जानते हो, तुम इस तरह से मुझे गलत मत समझो। जब इस तरह से भरत की आंखों से आंसू आने लगते हुए देखते हैं तो कौशल्या उठा लेते और उनको आलिंगन कर लेती है, और दोनों रोने लगते हैं फूट फूट के। और फिर वहां पे वशिष्ठ ऋषि आ जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं भरत अभी दशरथ महाराज के अंतिम संस्कार का समय आ गया है। तो फिर जब अंतिम संस्कार करके लौट के आते हैं, तो फिर जब भरत किसी और नागरिकों से बात कर रहे होते मंत्रियों से, और तभी शत्रुघ्न आगे आ जाते हैं, शत्रुघ्न आगे आ जाते हैं, तभी वहां पे मंथरा जा रही होती महल में, बड़े आलिशान कपड़े पहने होते हैं, उसका जो कुबड़ होता है उसको डेकोरेट किया होता है। और फिर तो इस बीच क्या होता है, कैकेयी जो होती है, जब भरत इस तरह से वचन बोलते हैं तो फिर कैकेयी ने जो सपना देखा होता है, कैकेयी सोचती होती है वास्तव में कि मैं सब भरत के लिए कर रही हूं, पर उसका जो सपना होता है वो फूट जाता है पूरा, और तभी कैकेयी को होश में आता है कि ये मैंने क्या किया, क्यों किया। पर तब तक बहुत देर हो जाती है, इट्स टू लेट तब तक। तो फिर जब शत्रुघ्न मंथरा को देखता है तो मंथरा को पकड़ लेता है, बोलते ये राक्षस ही हमारे सारे राज्य में दुख का सागर फैलाने के कारण है, मैं आज इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसको जोर से उसको हिलाने लगते, उसके सारे हीरे मोती उड़ जाते हैं, उसके सारे जो आवरण है वो जो जेवर है वो सारे बिखर जाते हैं, और वो चिल्ला रखती है उसका एक ही आश्रय कह के वो चिल्ला रखती है। तो कहके बोलते शत्रुघ्न क्या कर रहे हो तुम, तो बोले तुम अगर मेरी मां नहीं होती तुम्हारा मैं नहीं करता मैं, तो वो छुप जाती है। और फिर तभी भरत वहां पे आते हैं, तो कहके तुम्हें भरत के पास जाती है, बोलते रोको तुम्हारे भाई को। तो भरत बोलते हैं शत्रुघ्न को, अगर ये स्त्री होती तो मैं इसका क्या पहले कहके का भी वध कर देता था, पर सबसे पहले स्त्री है, और दूसरी बात यह है कि अगर हम इनमें से किसी को कोई हानि पहुंचाएंगे, अगर राम को यह पता चलेगा तो राम हमें कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि कैसे भरत महाराज स्वाभाविक है क्रोध होना, पर फिर भी जैसे लोअर इमोशंस हायर इमोशंस, जो क्रोध का अनुभव है, क्रोध का जो भावना है वो स्वाभाविक रूप से आती है, पर वो क्रोध को कैसे रोक के रखते हैं, वो सोचते हैं कि राम क्या सोचेंगे। इस तरह से अभी हम सब नौजवान हैं, हम सब ब्रह्मचारी हैं, तो कोई सुंदर स्त्री को देख लेते काम वासना स्वाभाविक रूप से आ जाएगी हृदय में, पर वो काम वासना कैसे रोकते हैं, हमने हमारे गुरु महाराज को जो वचन दिया है वो याद करते हैं। अगर हम कुछ गलत कार्य करेंगे तो हमारे गुरु महाराज क्या सोचेंगे उसके बारे में, और वैसा जब विचार आता है मन में तो फिर तुरंत वो जो वासना है उसको नहीं बोलना आसान हो जाता है। अगर वो विचार मन में नहीं आता है तो ये वासना को नहीं बोलना बड़ा मुश्किल है। जो क्या है, हम सब में भावनाएं जरूरी है, पर भावनाएं कैसी आएगी, जो संबंध हमारे हृदय में ज्यादा है, अगर वो स्त्री से आकर्षण ज्यादा है तो फिर वो भावना हमारे हृदय को पकड़ लेगी, पर गुरु के प्रति आकर्षण ज्यादा है तो वो भावना हमारे हृदय को पकड़ लेगी, और फिर उसके कारण हम जो भी बुरे विचार है उनको नहीं बोल सकते। तो भरत बोलते हैं कि वास्तव में राम हमें कभी माफ नहीं करेंगे, इसीलिए इसको छोड़ दो। और फिर वशिष्ठ सारी सभा को बुलाते हैं और भरत को बोलते हैं, हे भरत अभी तुम्हें राजा बनना होगा। तो भरत हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं क्या ये आपका आदेश है? तो ये आदेश नहीं है, पर यही उचित है, तुम्हारा ही राज्य बन, ओके, यही तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी, इसलिए अपने पिताजी की इच्छा पूरा करना यही तुम्हारे लिए उचित कार्य है। तो भरत महाराज सब सभा में खड़े हो जाते हैं, बोलते सब, मैं आप सबके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं। हाथ जोड़ के उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, बोलते हैं कि वास्तव में जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि राम को जंगल में भेजा जाए वनवास के लिए। तो मेरी अभी आपसे निवेदन यह है कि मैं राम को जंगल में जाके वापस यहां पे लेके आऊंगा और राम का ही यहां पे राज्याभिषेक होगा, तो क्या आप सबकी इजाजत है? तो ये सुनकर सब इतने आनंदित हो जाते हैं, तो हमारी इजाजत ही नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ आएंगे। तो अभी क्या आप भी आओगे? वशिष्ठ ऋषि को पूछते हो। हाँ, वशिष्ठ ऋषि भी एकदम आनंदित हो जाते हैं, बोलते हाँ जरूर आऊंगा मैं आपके साथ। तो इससे वो बहुत आनंदित हो जाते भरत, क्योंकि भरत जानते हैं कि वो छोटे भाई है, छोटे भाई है तो उनकी बात को टाल नहीं है राम, पर अगर वशिष्ठ मुनि है, वशिष्ठ मुनि बोलते हैं तो वो उनकी बात नहीं टालेंगे। तो उसके पहले जब दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार होता है तो वशिष्ठ मुनि वहां पे भाषण देते हैं, बोलते हैं कि हमने शास्त्रों में और इतिहास में मातृ प्रेम के बारे में बहुत सुना है कि माँ के माँ अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, उसके लिए अपने जान न्यौछावर करने के तैयार हो जाती है। दशरथ महाराज एक आदर्श राजा थे, आदर्श रूप से उन्होंने राज्य किया और उन्होंने इतिहास में पितृ प्रेम का एक नया मिसाल खड़ा कर दिया है कि अपने पिता के पिता का अपने पुत्र के प्रति कैसे प्रेम हो सकता है कि अपने पुत्र के विरह में वो अपने जान तक त्याग देते हैं। तो दशरथ महाराज अपने जीवन में महान थे और हम उनकी मृत्यु में भी महान है, तो वो उनका गुणगान करते हैं और फिर वे सब बड़ा रास्ता बनाते हैं। जब उनको जब अयोध्यावासियों को जानकारी मिलती है कि राम जंगल में राम को बुलाने के दशरथ जाए भरत जाएंगे तो सब जाने लगते हैं, तो बड़ा रास्ता बनाते हैं भरत महाराज। और महाराज दशरथ का जो हाथी होता है शत्रुंजय उसको साथ में लेके जाते हैं और सारा राज्याभिषेक का जो सामग्री होता है वो भी साथ में लेके जाते हैं और सैनिक घोड़े। भरत सोचते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा प्रेशर हम राम पे डालेंगे, पहले ही जानते हैं कि राम को लाना आसान नहीं है। तो राम क्या करते हैं, नदी पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि तुमको वनवास में रहना वन में रहना है तो मेरे आश्रम, मेरा आश्रम वन में है तो मेरे आश्रम में रह जाओ। तो बोलते हैं कि आपका मैं आपके आपके कृतज्ञ हूं, पर यह आपका जो आश्रम है यह अयोध्या के बहुत पास में है और आपका आश्रम बहुत विख्यात है, तो इसीलिए बार बार यहां पर अयोध्यावासी आते रहेंगे और अयोध्यावासी यदि आते रहेंगे तो उससे आपका जो आश्रम है उसकी शांति में व्यत्यय हो जाएगा, तो आपके घर यहाँ पर ऋषि मुनि हैं वो अपना ध्यान नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे कोई जगह बताओ जो इतनी विख्यात ना हो और जो अयोध्या से दूर हो। तो फिर वो बोलते हैं चित्रकूट पर्वत में जाओ। चित्रकूट बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है, वो जो कृष्ण लीला में वृंदावन की जगह है वो रामलीला में चित्रकूट की जगह है। और जो 14 साल वनवास था वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन में 10 साल रहे पर फिर श्री रामचंद्र चित्रकूट में 13 साल रहे, कितने साल का वनवास था, 14 साल का वनवास था। सो एवरीथिंग एल्स हैपेंड इन द लास्ट वन ईयर, सब कुछ जो हुआ ये फिगर्स है, ये रामायण आध्यात्म रामायण रामचरित मास में थोड़ा अलग है, वो अलग अलग युगों के अनुसार होता है, बट द पॉइंट इज कि जो उनका सारा वनवास था उसका अधिकांश समय वो चित्रकूट में रहे। तो वहां पे वो रहे, वहां पे बहुत ही सुंदर जगह है और वहां पे लक्ष्मण उनकी दिन रात सेवा करते थे और वहां पे जब रहने लग गए वो तभी भरत महाराज वहां पे आ गए। भरत वहां पे आ गए सारे राज सेना के साथ अनेकों अनेकों नागरिकों के साथ और ये भरत और राम का जो मिलन है और उनका जो संवाद है दैट इज उसको बताया गया है आचार्य द्वारा, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लव एंड ड्यूटी, ये कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष है। तो जो जो भरत महाराज है ये प्रेम की पराकाष्ठा है, और जो प्रभु श्री रामचंद्र है ये कर्तव्य पर की पराकाष्ठा है। तो वो बहुत ही सुंदर वार्तालाप है। तो भरत महाराज आते हैं, भरद्वाज ऋषि के पास आते हैं और भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हैं। भरद्वाज ऋषि को बोलते हैं आप कि कृपया आप बता सकते हो कि राम कहाँ गए हैं। तो फिर भरद्वाज ऋषि बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि तुम ये सारी सेना लेके आए हो, तुम्हारे कोई अनुचित विचार तो नहीं है राम के प्रति। तो जब ये सुनते हैं भरत महाराज, तो अगर आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे मेरे वर्या, तो मेरा तो विनाश निश्चित ही है। और उन्हें लगते है बोलते कि मेरा इस षड्यंत्र में कोई भी भाग नहीं था। तो फिर भरद्वाज ऋषि उनके हृदय को देखकर हंसने लगते, बोलते हैं कि मैं जानता था कि तुम्हारा इस षड्यंत्र में कोई योगदान नहीं है, पर मैंने जो बोला वो इसलिए बोला ताकि तुम्हारी जो राम को प्राप्त करने की, राम को जो बुलाने की इच्छा है वो और दूर हो जाए। क्योंकि मैं जानता हूं जब तुम राम के पास जाओगे उसे मिलोगे तो उनको वापस लाना आसान नहीं है। तो हम देखते हैं यहां पे जो लक्ष्मण, जो भरत का रिस्पांस है, भरत की प्रतिक्रिया कितनी आदर्श है। जब भरद्वाज ऋषि उनको बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि तुम्हारा कोई अनुचित उद्देश्य नहीं है राम के पास जाने के लिए, तो ये कंप्लीटली गलत एक्यूजेशन है, गलत आरोप है राम भरत पे। भरत ये बोलते कि तुम खुद को बड़े ऋषि बनाते हो, तुमको समझ में नहीं आता मेरा हृदय कितना निर्मल है, क्या इतने बड़े ऋषि कहते हो खुद को, मैं बिल्कुल निर्मल हृदय वाला हूं। वो खुद के गुणगान नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, हे ऋषि अगर आप भी मेरे बारे में ऐसा विचार करोगे तो मेरा विनाश निश्चित है। कितनी नम्रता है, कितना आदर्श है। और एक्चुअली जब कोई हम पे गलत आरोप करता है तो जब अगर हम डिफेंसिव में चले जाते हैं उसमें, तो क्या होता है कि उससे व्यक्ति को लगता है कि इतना डिफेंड क्यों कर रहा है खुद को, तो उससे क्या लगता है कि शायद ये सत्य है। पर भरत महाराज क्या करते, खुद को डिफेंड करने का प्रयास नहीं करते, वो अपने हृदय का जो भावना है स्पष्ट रूप से व्यक्त करते, अगर आप भी मेरा से सोचेंगे तो मेरा विनाश निश्चित है। और अपनी भावना व्यक्त करने के बाद फिर वो स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो ये बार बार होता है, सबसे पहले कौशल्या के साथ होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में होता है, फिर अयोध्या के रावण के साथ होता है, फिर गुहा के साथ होता है, फिर भरद्वाज ऋषि के साथ होता है। हर बार जब ऐसे होता है तो भरत के हृदय में मारो तीर जा रहे हैं। और फिर आखिरी बार जो जो गलत फहमी होती है किसके साथ होती है, लक्ष्मण के साथ होती है। और फिर तो अपनी सारी सेना के साथ भरत आ जाते हैं और चित्रकूट के पास में आते हैं। तो फिर चित्रकूट के पास में जब आते हैं तो बड़ा आवाज आने लगता है, चित्रकूट बड़ी शांत जगह है, और तभी राम और सीता बैठे हैं बातचीत कर रहे, तो अचानक को आवाज आते, तो बोलते लक्ष्मण ये आवाज कहां से आ रही है जरा देखो। तो लक्ष्मण एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, फिर पेड़ से देखने लगते हैं तो दूर पर उनको एक सेना दिखाई देने लगती है, तो कोई सेना आ रही लगता है। और फिर सेना आ रही है तो फिर किसकी सेना है देखो, और देखते हैं अयोध्या की सेना है, भरत है वहां पे मुझे दिख रहा है। तो भरत क्या होता है सेना, क्योंकि चित्रकूट बड़ा विशाल पर्वत है और उसमें राम कहां है पता नहीं है, तो सारी सेना को अगर जाना है तो समय लगेगा, तो इसीलिए भरत खुद अकेले आते आगे ढूंढने को, और कुछ दो तीन सैनिक होते हैं और ऋषि ऋषि होते हैं, वो आगे ढूंढने चले जाते हैं, बोलते हैं सेना दिख रही है और उसके आगे भरत दिख रहा है। तो तुरंत लक्ष्मण को दिखाते हैं ये एक नीच भरत, पहले तुमने वनवास दे दिया और वन में रहने जा रहा है, यहां पर सेना लेके आए तुम्हारे मारने के लिए, पर वो जानता रहे है कि उसके राम के बीच में लक्ष्मण है और लक्ष्मण के तीर आज ही उसे यम लोग भेज देंगे और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे। तुरंत वो अपने धनुष और बाण निकाल कर तैयार हो जाता है। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, अगर भरत ने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है तो फिर उस अपराध की सजा देना तो उचित है, पर इस तरह से अपने भाई की मृत्यु के बारे में बात करना ये कदापि अनुचित है। अगर तो ये पहली बात बोलते हैं तो प्रभु श्री राम कितना एक्सपर्टली वो लक्ष्मण को पूरा हैंडल कर दे। पहले बोलते हैं अगर उन्हें कोई अपराध किया है तो भाई भाई को मारने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें ये वन में रहने में बहुत असुविधा हो रही है और तुम्हें राज्य की इच्छा है तो तुम्हें भरत को मारने की जरूरत नहीं है। जब भरत यहाँ पे आ जाएगा तो मैं उसको मारूंगा और वो थोड़ा जगह में जंगल में रहेगा और तुम जाके अयोध्या का राज्य कर सकते हो।
तो जब लक्ष्मण वो सुनता है तो चलो तुम्हें तीर धर चढ़ जाता है कि मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है। तो बोलते है तो प्रभु श्री राम बोलते है
क्या तुम जानते नहीं भरत हमसे कितना प्रेम करता था। भरत जो प्रेम तुम्हारा मेरे लिए है वही भरत का मेरे लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि भरत वास्तव में यहां पे हमें पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया है, हमें राज्य में वापस बुलाने के लिए आया है। वही जंगल में हमें वापस राज्य में बुलाने के लिए आया है और हमारा अतिथि है और हमारे अतिथि का स्वागत तुम तीरों से करना चाहते हो। तो लक्ष्मण पूरा क्रॉस हो जाते हैं एकदम। और फिर जब भरत वहां पे आते हैं तो भरत जब देखते हैं एक ऐसे मुनि के वस्त्र पहने हुए बड़े तपस्वी जैसे रह रहे, वो देखकर भरत वहीं पे राम बोलते हैं पर राम को देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र आते हैं भरत का आलिंगन करते हैं और फिर वो देखते हैं कि भरत ने भी एक मुनि के साधु के वस्त्र पहन लिए हैं। वो कैसे होता है कि जब भरत गुहा के पास आते हैं तो पहले गुहा सोचता है कि ये सारी सेना लेके क्यों आ रहे हैं, तो शायद ये राम को वध करना चाहते हैं। बोलते हैं कि हम हमारी सारी सेना के साथ इसका प्रतिकार करेंगे और उनको हम अयोध्या के मुकाबला नहीं कर सकते पर हम हमारी जान दे देंगे, पर अगर भरत राम के पास जाएगा तो हमारे मृत शरीर से ही पार करके जाएगा, उसके बिना जा नहीं सकता है वो। तो वो सब वहां पे खड़े हो जाते हैं पर फिर वो गुहा सोचता है कि युद्ध बोलने के पहले हमको जान करना चाहिए कि क्यों आए हैं ये। तो फिर जब जाते हैं वहां पे वो जानकारी करने के लिए तो वहां पे सुमंत्र हो जाते हैं और सुमंत्र वो पहले गुहा से मिले हैं और देखा कि राम और गुहा में कितना घनिष्ठ संबंध है। तो फिर सुमंत्र बोलते हैं ये जो है निषाद का राजा है और यह राम का बड़ा घनिष्ठ है भक्त है, तो फिर ये जरूर बता सकता है हमें राम कहाँ गए हैं। फिर गुहा उनसे पूछता है, जब गुहा को पता चलता है कि राम की भरत का हृदय कितना निर्मल है, बोलते है कि क्या भ्रातृ प्रेम का मिसाल है कि सारा राज्य छोड़कर तुम राज्य दूसरे को देने को जा रहे हो, अपने भाई को देने जा रहे हो, तो मैं जरूर आपको मदद करूंगा। तो गुहा बताता है कि रात के समय में ये सीताराम यहां पे सोए थे, जमीन पे सोए थे और फिर उन्हें कैसे वस्त्र पहनते बताता है। तो जब वो सुनता है भरत, तो भरत बोलता है कि जो वस्त्र मेरे भाई ने पहने हैं वही वस्त्र मैं पहनूंगा। और भरत का भरत जानता है कि राम इतने आसान से आएंगे नहीं, तो भरत क्या सोचते हैं कि अगर राम कहते हैं कि वनवास में रहना है तो मैं वन में रह लूंगा और वो राज्य कर सकते, इसीलिए वो भी एक ऋषि जैसे वेश पहन लेते हैं। द प्रभु श्री राम देखते हैं कि भरत ने एक ऋषि जैसा वेश पहना हुआ है, बोलते हैं हे भरत ऐसा वेश तुमने क्यों पहना है, क्या मैं तो जानता हूं कि तुम राजकारभार में बड़े निपुण हो, क्या तुमने कोई राजनीतिक गलती कर दी और हमारे किसी शत्रु ने आकर हमारे राज्य को हरा दिया और तुमको जंगल भेज दिया है। और इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र बात कर रहे होते बड़े प्रेम से भरत का आलिंगन करते हुए। और फिर भरत प्रभु श्री राम के रूप को देख रहा है, उनके प्रेम को देख रहा है, उनके वस्त्र को देख रहा है और रो रहा है और जो भी अगली चीज बतानी है उनको राम को उसके कारण उनको और दुख हो रहा है। बोलते तुम यहां पे आए हो लगता है सारा राज्य आया है। और फिर देखते हैं कि वो दशरथ महाराज का हाथी धीरे 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 आ रहा है, उसके ऊपर छाता है पर छाते के नीचे कोई भी नहीं है। और राम पूछते पिताजी कहाँ है, पिताजी का हाथी अकेले क्यों आया है। दशरथ महाराज के देहांत के बारे में भरत बोलते हैं उनको कि तुम्हारे विरह में पिताजी ने हमारा शरीर त्याग दिया। और जब प्रभु श्री राम से तो बोलते हैं तो रामचंद्र गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। विरचित पितृ निज कर्म पितृ कराम, फिर वो जाके वहां पास में गंगा है उसमें पानी दे देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि भरत महाराज बोलते हैं कि हे राम, हमारे कुल में ऐसी ही परंपरा रही है कि सबसे बड़ा पुत्र है वही राजा बनेगा, तो कृपया अभी पिताजी चले गए हैं, तुम आओ और तुम राजा बन जाओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि नहीं, हमारे पिताजी का आदेश था कि मैं जंगल में रहूं और तुम राजा बनो, तो भाई आदेश की पूर्ति उचित है, तो तुम जाओ और तुम राजा बनो, मैं 14 साल के लिए जंगल में रहूंगा। भरत महाराज हताश हो जाते हैं। भरत बोलते हैं कि वास्तव में कैकेयी के प्रभाव में आकर पिताजी ने एक गलत उपदेश दिया है, तो जरूर हमारे पुत्र के रूप में हमें हमारे पिताजी के आदेश का पालन करना चाहिए, पर हमारे पुत्र के रूप में जो कर्तव्य है, अगर पिताजी ने कुछ गलती की है तो गलती को सुधारना हमारा कर्तव्य है। पर बोले बुद्धिमान है, तो हमारे पिताजी ने कैकेयी के बहकावे में आकर गलती कर दी है, तो हमें उस गलती को सुधारना चाहिए, इसीलिए कृपया करके आप वापस आ जाओ। तो फिर बोलते हैं कि हमारे लिए एक पुत्र को यह जज नहीं करना है कि पिताजी ने गलती की नहीं, जो आदेश दिया है वो ही पूरा करना है। तो वास्तव में तभी जब दशरथ महाराज भरत जाते हैं तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी साथ में आती है, तो कैकेयी वहीं पर रुकी होती है और कैकेयी बोलती है कि मैंने बोला था दशरथ महाराज को कि तुम्हें वन में भेजो, तो मैं जो आदेश है उसको कैंसिल कर देती हूं, तुम जरूर आके लौट जाओ और राजा बन जाओ। तो रामचंद्र बोलते हैं कि नहीं, जो पिताजी ने आदेश दिया है वो आदेश पिताजी का ही है, और उसको अगर बदलना है तो केवल पिताजी ही बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता है। फिर भरत बोलते हैं, पिताजी का आदेश था कि एक पुत्र जंगल में रहेगा, एक पुत्र राजा बनेगा, तो वही होगा। तो तुरंत भरत बोलते हैं कि ठीक है, अगर एक पुत्र को जंगल में रहना है तो मैं जंगल में रहूंगा और तुम राजा बन जाओ। तो फिर भरत महाराज प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे बन गए हैं भरत, कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का फल खुद ही भुगतना पड़ता है, और सब व्यक्ति अपने कर्म को इस तरह से बदल लग गए तो धर्म का पूरा लग्रहण हो जाएगा। जो मेरा कर्म है वो मुझे भुगतना है, तुम्हारा कर्म तुम्हें स्वीकार करना है, तुम्हें राजा बनना है। तो भरत बोलते हैं कि मुझ में निपुणता नहीं है, मैं छोटा बालक हूं, मैं राजा नहीं बन सकता। तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं तुम्हारे साथ सुमंत्र है, वशिष्ठ ऋषि है, ये सब तुम्हें राजा बनने, तुम्हें राज्य में मार्गदर्शन करे कैसे राजा कार्य करना है। तो भरत बिल्कुल हताश हो जाते हैं, जो भी बोलते हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र, ये लंबा संवाद है, उसमें बहुत सुंदर संवाद है ये, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बोल रहा हूं। तो फिर वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि शास्त्र ने बताया है कि जो पिता का आदेश है, पिता से बड़े गुरु है, पिता का से बड़ा आदेश गुरु का आदेश है, तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम वापस आ जाओ और राजा बन जाओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र अपना हाथ जोड़ लेते, बोलते हैं हे गुरुदेव, जरूर आपका जो स्तर है वो पिता से बड़ा है, पर मेरे लिए मेरे पिताजी ने ही मेरा परिचय आपसे करवाया था, तो कृपया आप मुझे मेरे पिताजी के आदेश के खिलाफ जाने को मत बोलो। तो फिर जो भी बोलते हैं तो बहुत वो दुखी हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। तो एक बार जबली ऋषि होते, बोलते हैं कि ये तुम पिताजी के बारे में क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी वो तो एक शरीर थे, वो जल के राख हो गए अभी, अबे तुम्हें तो भोग करना चाहिए, राज्य मिल रहा है तो भोग करो, क्यों ऐसा बकवास कर रहे हो धर्म के बारे में। तो जबली वास्तव में खुद भी जो तत्वज्ञान बोल रहे हैं उसको विश्वास नहीं कर रहे, पर वो क्या सोचते हैं किसी न किसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र को वापस राज्य में लेके जाना है। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र पहली बार क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या बकवास बक रहे हो तुम। बोले एक ब्राह्मण को ऐसा बकवास शोभित नहीं देता है, तो इस तरह से बोलोगे तो अनेक लोगों का गुमराह हो जाएंगे। तो और फिर वो तत्वज्ञान बताते हैं पूरा, और फिर जबली को शांत कर देते हैं। फिर वशिष्ठ बोलते हैं जबली को क्रोध होने की जरूरत नहीं है, वो भी तुम्हारा भक्त है, वो सिर्फ भावनाओं से बहुत पीड़ित हो गया है। और तभी भरत बोलते हैं कि हे राम, अगर आप वापस नहीं आओगे तो मैं यहीं पर रहूंगा और उपवास करके अपना शरीर त्याग दूंगा। जब इस तरह से बोलते तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि हे भरत, तुम इसे धर्म संकट में मुझे मत डालो, तो मेरा कर्तव्य मुझे करने दो, तुम्हारा कर्तव्य तुम करो। तो फिर दोनों विवश हो जाते हैं। फिर बाद में बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना इस जंगल से वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर तो एक रामायण के लिटरेटर ने श्री कृष्णाचार्य बताते हैं कि ये जो द्वंद्व है ये बिल्कुल इसने कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और किसके लिए द्वंद्व है? अभी धीरूभाई अंबानी उनकी मृत्यु हो गई तो दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे कि मुझे चाहिए जायदाद, मुझे चाहिए जायदाद। पर ये राम और भरत क्या है, तुम लो राज्य, तुम लो राज्य, इसके लिए झगड़ा चल रहा है। और फिर बाद में अंत में क्या होता है, फिर प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि वास्तव में मैं राज्य स्वीकार नहीं कर सकता, तो हे वशिष्ठ ऋषि आप फैसला करो। तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा था और भरत की भ्रातृ प्रेम, इन दोनों को देखकर मैं भी मोहित पड़ गया हूं, मुझे भी समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। तो फिर वो सभा को स्थगित कर देते हैं और फिर सब सोच में पड़ जाते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और फिर रामायण के एक लिटरेटर में वर्णन आता है कि अगले दिन जब सभा होती वापस, तो कुछ रामायण में, एक रामायण में वर्णन है कि वहां पे जनक महाराज आते हैं और जनक महाराज इसका हल करते हैं और कई बार पता है वशिष्ठ मुनि हल करते हैं। और तो फिर बेसिकली होता क्या है, फिर प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं हे राम, हे भरत, मेरी कर्तव्य निष्ठता से तुम्हारा प्रेम बड़ा है, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई, मेरे कर्तव्य निष्ठता की हार हो गई। तुम यहां पर मुझे राज्य देने आए थे, मैं राज्य स्वीकार करता हूं। और सब अयोध्यावासी बड़े आनंद से आते हैं और जय 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 बोल लगते हैं। तो पुरुष हाथ ऊपर करते हैं, मैं राज्य स्वीकार करता हूं और मेरी ओर से मैं तुम्हारे प्रेम को पूर्णतः स्वीकार करता हूं और इसलिए तुम मेरे राज्य देने आए हो, मैं राज्य स्वीकार करता हूं, पर ताकि मेरे पिताजी का वचन गलत न हो इसीलिए मैं ये राज्य तुम्हें 14 साल के लिए सौंप देता हूं। तो मेरे ओर से तुम 14 साल के राज्य स्वीकार करो। तो अभी भरत कुछ भी नहीं बोल पाते। और फिर भरत बोलते हैं कि कृपया आप आपके पादुका मुझे दो। तो फिर भरत अर्पित पादुक राम, निज पादुक राम। तो इस तरह से फिर वो पादुका का अभिषेक वहीं पे वो बाहर जाके करते हैं। भरत जो राज्य है राज के बाहर नंदीग्राम में रहते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि 14 साल मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा और एक दिन भी देर हो गई तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो भरत वहां पे बाहर रह के बहुत तपस्या करते हैं और जिस तरह से तपस्या कर रहे होते हैं वो, तो फिर भरत की जो पत्नी होती मांडवी वो आती है, वो बोलती है वो मैं भी आपके साथ कुटुंब में रहूंगी और मैं भी आपके साथ तपस्या करूंगी। तो भरत बोलते हैं नहीं कि तुम्हें राज्य में रहना चाहिए और हमारे माता है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो भरत वो भी यद्यपि उनकी पत्नी है पत्नी की सेवा स्वीकार नहीं करते और वहीं पर रहते हैं वो। तो भरत एक्चुअली वास्तव में जो तपस्या राम कर रहे है वो जंगल में रह रहे, पर लक्ष्मण क्या तपस्या कर रहे हैं वो अपनी पत्नी के बिना रह रहे हैं। तो दोनों की तपस्या साथ में भरत करते, वो वन जैसे ही रह रहे, वन जैसे ही अन्न खाते हैं, कम से कम ऐसे बताया गया कि प्रभु श्री रामचंद्र के लिए तो अलग अलग फल फूल कंदमूल काफी अच्छी तरह से लाते थे लक्ष्मण और फिर उसको पकाकर सीता माता उनको खिलाती थी। पर जो भरत थे वो जो बार्ली होता है, बार्ली को काव यूरिन में गौमूत्र में डुबा के खाते थे वो। तो जो तपस्या राम और लक्ष्मण कर रहे थे उनसे ज्यादा तपस्या वो यहां पे कर रहे होते। और फिर यहां पे तो फिर उसके बाद में जब भरत लौट के आते हैं तो ये प्रसंग यहां पे बताया मैंने कि लक्ष्मण पूछते हैं क्या भावनाएं बुरी है, मतलब भावनाएं बुरी नहीं है, भावना अगर हमें अधर्म की ओर लाते हैं तो वो बुरा है, तो भावना अगर हमें धर्म की ओर लाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये सारे वार्तालाप में हम एक चीज देखते हैं, कैसे सब हमेशा क्या सोच रहे हैं कि दूसरों के बारे में, कल्याण के बारे में। तो ऐसे दो प्रसंग है, संक्षिप्त में मैं बोलता हूँ, उसके बाद में हम अंत करेंगे। तो जब इंद्रजीत के प्रहार से लक्ष्मण का वध होता है, तभी प्रभु श्री रामचंद्र पूरे हताश हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि उनके शरीर में कुछ प्राण है ही नहीं, बिल्कुल प्राण नहीं है। जब वो ऐसे प्राण नहीं देखते तो प्रभु श्री रामचंद्र विलाप करने लगते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, वो बोलते हैं कि जब मेरे पिताजी मुझसे विरह हो गए तो मुझे बहुत दुख हुआ, उसके बाद में सीता मुझसे चली गई तो दुख हुआ, पर जो दुख मुझे आज हो रहा है लक्ष्मण के विरह में, वो असहनीय है मेरे लिए। मुझे सीता जैसी दूसरी पत्नी मिल सकती है, पर लक्ष्मण जैसा कोई और भाई नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सीता पत्नी होने के कारण सीता का कर्तव्य था मेरे साथ आने का, पर लक्ष्मण का कोई कर्तव्य नहीं था। लक्ष्मण ने जो किया वो कर्तव्य के परे था। He went beyond the call of duty to serve me. Where can I get a brother like this again? ऐसा भाई जो अपने कर्तव्य के परे जाकर इतनी सेवा करता है, ऐसा भाई मुझे कहां मिलेगा? तो अगर मेरा भाई चला गया तो फिर सीता भी प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, जीवन भी बरकरार रखे क्या करूंगा? तो सुग्रीव की ओर मुड़ते हैं, हे सुग्रीव, युद्ध को बंद कर दो अभी, मुझसे आगे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई जीवन की भी इच्छा नहीं है, मैं यहीं पे तपस्या करूंगा और अपने जीवन को त्याग दूंगा। तुम अपने सैनिक, अपने वानरों को लेकर किष्किंधा लौट जाओ और मैं अयोध्या में नहीं जा सकता। भरत लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने मुझे बताया था कि हे राम, मैं मेरे पुत्र को तुम्हारे हवाले कर रही हूं, तुम्हारे जिम्मेदारी में सौंप रही हूं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको कि जो मेरा भाई उन्होंने मुझे सौंपा था उसका मैं संरक्षण नहीं कर सका, मेरे आंखों के सामने उसकी मृत्यु हो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अयोध्या नहीं जा सकता। हे सुग्रीव, तुम चले जाओ, अभी ये युद्ध कोई मतलब नहीं रहा है। युद्ध का मतलब है मेरे लिए सीता का मतलब है, न जीवन का मतलब है। पुरुष रामचंद्र रोने लगते हैं, फिर लक्ष्मण की ओर देखते हैं, कुछ भी प्राण नहीं दिखते, फूट फूट कर रोने लगते हैं। और सुग्रीव ये सब देखकर इतना क्रोधित हो जाते हैं, वो बोलते हैं, अंगद को बुलाते हैं, अंगद तुम राम और तुम लक्ष्मण को किष्किंधा लेके जाओ और वहां पे हमारे सारे वैद्य है, वो वैद्य शायद लक्ष्मण को ठीक कर देंगे। ये जो अत्याचार इंद्रजीत ने किया है उसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा, हम सब आक्रमण करेंगे और न केवल इंद्रजीत, सारी लंका को जलाकर राख कर देंगे। सुग्रीव बहुत क्रोध जाता है, सुग्रीव की वाणी राम की वाणी सुनकर सारे वानर हताश हो जाते, सुग्रीव की वाणी सुनकर सब उत्तेजित हो जाते, सब विजय घोष करने लगते हैं, सिर्फ राम हताश रहते हैं। तो उस समय विभीषण वहां पे आते हैं और विभीषण बोलते हैं कि वो स्पर्श करते हैं लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण को स्पर्श करते हैं बोलते हैं कि ये जो अस्त्र इस्तेमाल किया है इंद्रजीत ने, उससे ऐसे लगता है कि जान चली गई है, पर अभी तक जान चली नहीं गई है, और फिर वास्तव में वही जड़ी बूटी है, वो लेके आने को बोलते हैं। तो वाल्मीकि रामायण वर्णन है कि वास्तव में हनुमान जी दो बार जाते हैं, एक बार तो राम और लक्ष्मण दोनों हतप्रभ हो गए होते हैं, दूसरी बार लक्ष्मण अकेले हतप्रभ हो जाते हैं बेहोश। तो जड़ी बूटी लाते हैं, फिर लक्ष्मण को पुनः जागृत कर देते हैं। वो रामचरितमानस में है, रामचरितमानस में, देखिए थोड़ा एक डिटेल थोड़े कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्या होता है रामचरितमानस हमने खासकर नॉर्थ इंडिया में जो हमने बहुत बार सुना है, और फिर वो है। तो ये जो है प्रसंग वाल्मीकि रामायण में से बताया गया है कि एक्चुअली विभीषण बोलते हैं और सुशील जो होते हैं उनके वैद्य जो वानर में वैद्य होते हैं वो बोलते हैं कि जड़ी बूटी लेके आने पड़ेंगे। जो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जाते हैं वो उनके वैद्य को उठा के लेके आते हैं यहाँ पे, और फिर वैद्य बोलता है कि ये जड़ी बूटी लाना पड़ेगी। तो थोड़ा डिटेल्स थोड़े अलग है। तो फिर जब उसके बाद में जब सारा हो जाता है कि युद्ध हो जाता है और फिर सीता को, सीता और राम का मिलन होने वाला है, तो फिर तभी राम लक्ष्मण को बोलते हैं, हे लक्ष्मण, तुम एक अग्नि जलाओ अभी। और फिर लक्ष्मण जब सुनते हैं तो सीता आ रही होती है, सीता आ रही होती है वहां पे, पर जब सीता आ रही होती है तो राम पसंद नहीं होते, राम बड़े गंभीर होते हैं। और जब राम बोलते हैं सीता को, तुम लक्ष्मण को तुम अग्नि जलाओ, तो ये वाल्मीकि रामायण में नहीं प्रसंग, ये दूसरे इसमें है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में माया सीता का वर्णन नहीं है। तो तभी जब ऐसे बोलते हैं कि तुम अग्नि जलाओ, तो लक्ष्मण एकदम क्रोधित हो जाते, बोलते हैं कि सीता इतनी पतिव्रता है, इतनी प्रामाणिक है, और तुम उस सीता की परीक्षा ले जाते हो अग्नि के द्वारा। तुम ये भूल गए हो सीता केवल तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो मेरी माँ है। और अगर तुम मेरी माँ के चरित्र पे कुछ आरोप लगाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ मेरे शस्त्र उठा लूंगा। राम राम कुछ बोल रहे होते, लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे थे कि सीता से तुम्हारा इतना प्रेम था, सीता के बारे में तुम संशय कैसे कर सकते हो, और बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे। और फिर पहले राम बोलते, तुम्हारा बोलना हो गया, अभी मुझे कुछ बोलने दोगे तुम? और फिर राम लक्ष्मण को बताते हैं वो पूरे माया सीता के बारे में। आध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कैसे कि राम ही सीता को बोलते हैं कि अभी हमें अलग लीला करनी है, तो इसीलिए तुम अग्निदेव के पास चले जाओ। और फिर जो वेदवती होती है, वेदवती जब रावण वेदवती की इज्जत लूटने का प्रयास करता है, तो वेदवती वो अग्नि में खुद के शरीर में अग्नि प्रकट करके वो अदृश्य हो जाती है। बोलती है कि मैं पुनः आऊंगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। तो फिर वो वेदवती जब सीता अग्नि में चली जाती है, तो वेदवती वहां से प्रकट होती है वो, और जो लंका में जाती है वो सीता में होती है, वास्तव में वेदवती होती है वो। तो वेदवती ने पहले अपना शरीर त्याग दिया होता है, पर वो रावण के विनाश के लिए पुनः वापस आ जाती है। और फिर उसके बाद में अंत में अभी जब पुरुष रामचंद्र और लक्ष्मण और सारे वानर और राक्षस भी, विभीषण उसके चार जो साथी होते वो सब आते हैं अयोध्या। तो अयोध्या आते हैं तो वो क्या करते हैं, अयोध्या के बाहर पहले भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं, क्योंकि पुरुष रामचंद्र ने भरद्वाज ऋषि को बोला होता है कि मैं जा रहा हूं जंगल में, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और वापस अयोध्या में आऊंगा तो आपके आशीर्वाद लेकर ही अयोध्या में प्रवेश करूंगा। तो इसलिए वहां पर उतर जाते हैं वो। और फिर वे हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान, ये भौतिक जगत ऐसा है कि अगर हम भोगेश्वर में रहते हैं तो जरूर आसक्ति आ जाती है, तो मैं देखना चाहता हूं कि अगर भरत इतने साल अगर राजा रहा है, उसके हृदय में अगर राज्य के प्रति कोई प्रेम आसक्ति उत्पन्न हो गई है, अगर वो राजा बनना चाहता है तो मैं उससे राज्य पुनः लेना चाहता, तो तुम जाओ और उसको संदेश दो कि राम वनवास से वापस आ रहा है। और अगर तुम देखोगे कि उसके चेहरे में ये जानकार सुनकर जरा भी दुख हो रहा दिखाई देता तुमको, तो तुम मुझे बताने आ जाओ और फिर मैं वहां पे लौट कर नहीं आऊंगा, भरत को ही राजा बने दूंगा। भगवान इतने निस्वार्थ है, अगर तुम राजा बनना चाहते तो बने रहो राजा। तो प्रभुपाद जब हवाई में थे तो एक भक्त वहां प्रचार कर रहे थे, जब प्रचार कर रहे थे तो वहां पे एक व्यक्ति बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया उनके प्रचार से, और वो भक्त को होटल ले दिया उन्होंने डोनेशन में गोविंद बनाने के लिए। पर बाद में वो भक्त थोड़े इस्कॉन से दूर चले गए और वो होटल उन्होंने कुछ तो ये कर लिया और अपने नाम पे कर लिया वो होटल। फिर प्रभुपाद जी वहां पे आ गए, तो प्रभुपाद जी जब आए तो बोले तुम किसके शिष्य हो? बोले तुम्हारे शिष्य प्रभुपाद जी। तो फिर शिष्य की संपत्ति किसकी होती है? बोले गुरु की होती है। तो फिर ये होटल किसका है? बोले मेरा है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, होटल लो और खुश रहो। प्रभुपाद गिव द होटल टू हिम कम्प्लीटली। और फिर जब प्रभुपाद जी ऐसे बोला, वो जो भक्त थे वो तभी टेम्परली आसक्त हो गए और प्रभुपाद जी को होटल दिया नहीं। पर बाद में क्या हो गया, जब प्रभुपाद जी के निस्वार्थ प्रेम का जब उन्हें स्मरण हुआ, तो ही केम बैक टू द फीट ऑफ प्रभुपाद एंड देन ही सर्व प्रभुपाद जी का सेवा की, और फिर बाद में भगवत धाम और बड़े कृष्ण भावना में लौट गए। तो प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त किस प्रकार से कार्य करेंगे हम बोल नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी बोल सकते ये कृष्ण की संपत्ति तुम हड़प कर रहे हो, पर वो भक्त पहले उन्होंने बहुत सेवा की थी इस्कॉन में, प्रभुपाद जी ने जो बोला था कि एक विशेष देश जापान में जो जाके प्रचार करेगा उसको मैं स्वयं भगवत धाम ले जाऊंगा, तो कोई भी आने को तैयार नहीं था क्योंकि जापान बहुत ही गौरव देश था, पर वो भक्त गए थे वहां जापान में प्रचार करने के लिए और उन्होंने प्रचार किया था, पर बाद में वो जापान में समय हो गया था, उसके कारण उनका थोड़ा समस्या आ गई थी और फिर वो थोड़े माया में चले गए। श्रीकार प्रभुपाद जी ने पिछले सेवा का स्मरण किया, उनको बिल्कुल डांटा नहीं, और प्रभुपाद जी के निस्वार्थ प्रेम का उनको अंत में स्मरण आ गया और वो भगवत भक्ति में लौट के आ गए। तो प्रभु श्री रामचंद्र बोल रहे थे कि अगर उनको राज्य चाहिए तो रहने दो राज्य, तो हनुमान जी तुरंत वहां से चले गए और नंदीग्राम में गए और वहां पे बैठकर अपना राज कारभार संभाल रहे थे, तपस्या कर रहे थे भरत महाराज भरत। और फिर जब वो भरत को देखा उन्होंने तो हनुमान जी ने प्रणाम किया, बोले कि मैं राम का संदेशक हूं और राम ने बताया है कि वो अभी आने ही वाले हैं कुछ ही समय में। और जैसे ही भरत ने सुना, भरत के आंखों से आंसू आने लग गए और क्या तुम सत्य बोल रहे हो, क्या मेरे राम तुरंत वापस आने वाले कुछ ही समय में? हाँ जरूर आने ही वाले। तो इतने आंखों से आंसू आ रहे थे उनके, इतने आनंदित हो रहे थे। और फिर भरत आने बोले, मैं तुमको, तुमने इतनी खुशखबर दी है मुझे, मैं तुमको एक गांव, 10 गाय, 100 घोड़े और 12 कन्याएं भेंट में देता हूं।
ऐसे संख्या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर कन्याएं बोल देते हो। तो हनुमान जी हाथ देते, मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए, आपकी भेंट आप ही रखो। पर
प्रभु श्री राम तुरंत आ ही रहे और वो जब हनुमान जी देखते हैं कि कितना आनंदित हो गए भरत महाराज, भरत महाराज इतना आनंदित हो गए हैं कि वो देखते हैं कि भरत की जो भक्ति है मुझसे कुछ कम नहीं है, जितनी उनके स्वयं की भक्ति है प्रभु श्री रामचंद्र की उतनी ही उनकी भक्ति है। राम को भी चिंता नहीं हो चुकी भरत की कोई आसक्ति नहीं है, भरत केवल प्रभु श्री राम के सेवक में ही रूप को पहचानता है। और फिर वो जाके राम को जान करते, फिर रामचंद्र आ जाते हैं वहां पे, पुष्पक से आते हैं, जब पुष्पक से नीचे आ रहे होते तभी भरत उनकी आरती शुरू कर देते हैं, आरती शुरू करके उनका स्वागत करते हैं। तो जो हनुमान है ये हमारे गुरु के समान है, तो गुरु वास्तव में हमको बताने आते हैं कि कृष्ण आपके हृदय में आ जाते हैं, पर हमारे हृदय में हमने बहुत कुछ चीजें रखी है, अगर कृष्ण को लाना है तो वो सब चीजों को त्यागना है, पर वो चीजों को अगर त्यागने को तैयार नहीं होते हैं तो कृष्ण प्रवेश नहीं कर सकते हमारे हृदय में। तो इसीलिए अब जब गुरु देखते हैं कि हमारा हृदय अभी तक कितना शुद्ध हुआ है, और जितना शुद्ध हुआ है वो गुरु और कृष्ण में डायरेक्ट संबंध होता है, तो हमारे गुरुदेव जो होते हैं वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि ये हृदय भी शुद्ध हो गया है, ये हृदय में और कुछ भी नहीं है, कृपया आप यहाँ पे प्रवेश कीजिए। और अगर हृदय में और चीजें हैं तो गुरुदेव बोलते हैं कि अभी समय लगेगा, अभी राम को आने को समय है। तो इसी तरह से वास्तव में जितने हम हमारे हृदय को खोल देते हैं, तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद क्या आप आपके सब शिष्यों को समान प्रेम करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, यस, हाँ मैं सबको समान प्रेम करता हूं, पर कोई अगर आगे आकर सेवा करता है तो मैं भी प्रतिसाद करता हूं। मतलब क्या? प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वास्तव में एक गुरु है अपने सब शिष्यों से समान प्रेम करते हैं, पर जैसे पिता अपने सब पुत्रों से प्रेम करते हैं, पर कोई पुत्र अगर आता है जो घर की जिम्मेदारी संभालने लगता है, जो समाज, जो परिवार का बिजनेस है उसकी जिम्मेदारी संभालने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से जो पिता है उनका प्रेम उस पुत्र के ओर अधिक हो जाता है। दूसरी तरह से प्रभुपाद जी सबसे प्रेम करते थे, पर जो अधिक प्रेम था सबसे वो किससे होता था? जो ज्यादा से ज्यादा सेवा करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी अपना शरीर त्याग करके जाने वाले थे, तो 2-3 बार भक्तों ने उनको पूछा, प्रभुपाद जी आपके बाद आपके सक्सेसर कौन होंगे, आपके बाद अगले आचार्य कौन होगा? तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया? और चले, जो होना चाहेगा वो हो सकता है, whoever wants to he can become the successor। मतलब क्या? प्रभुपाद जैसे कोई लीगल लिखने वाले नहीं है कि आप मेरे सक्सेसर बनोगे। एक्चुअली गुरु अपने शिष्य को देता क्या है? कोई मंदिर की संपत्ति या कोई भौतिक भेंट नहीं देता है। What is the gift that a disciple gives to his guru gives to his disciple? That gift is the desire to serve Krishna. Guru अपने शिष्य को क्या भेंट देता है? भगवान की सेवा करने की इच्छा। और प्रभुपाद जी बोल रहे थे, जो ये इच्छा स्वीकार करता है, जो भगवान की सेवा करने लगता है, वही मेरा वारिस बन जाएगा।
तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब थे उन्होंने 11 लोग बनाए जीबीसी में, तो उनमें से कई लोग हैं वो अभिनेता बने हैं, पर कई ऐसे भक्त हैं जिनको प्रभुपाद जी का आसंग नहीं था, पर प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, भगवान के संदेश का प्रचार करने की, जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने वो सेवा वो इच्छा स्वीकार की है, वो इच्छा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना दिया है, उस हद तक प्रभुपाद जी की उनको शक्ति दी है और वो प्रचार कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे वो बोले कि वास्तव में ये प्रभुपाद जी इतने पंडित नहीं है, इतना संस्कृतों को अच्छा नहीं आता है, इतने शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है, और वे वास्तव में जो शिक्षा दे रहे हैं वो बहुत बेसिक है, वो एडवांस शिक्षा नहीं दे रहे। तो प्रभुपाद जी को जब पता चला तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को ये उस भक्त ने बताया, तमाल कृष्ण महाराज जाके प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद जी बोले कि ओ उनको आप जाके बोलो कि भक्ति सांस ठाकुर की क्या इच्छा थी, ग्रंथ लिखो, मंदिर खोलो और भक्त बनाओ। तो उनको जाके पूछो कि मुझसे ज्यादा ग्रंथ उनमें से किसने लिखे, मुझसे ज्यादा मंदिर उनमें से किसने बनाए, और मुझसे ज्यादा भक्त किसने बनाए। ये प्रभुपाद जी का अहंकार नहीं था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आई हैव इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु की जो वारिस है वो मुझे प्राप्त हुई है। तो वास्तव में जब गौड़िया मठ जब भक्तान सर चले गए तो प्रभुपाद जी को कोई प्रॉपर्टी का डेड नहीं मिला, प्रभुपाद जी के पास कोई मंदिर नहीं था, और भक्तान सर के शिष्यों में झगड़ा हो गया कि वो मंदिर किसके है, किसकी वारिस है। बट दैट वॉज नॉट द रियल लेगेसी, वो भक्ति सांस ठाकुर की असली भेंट नहीं थी। वास्तव में असली भेंट क्या थी, भगवान के सेवा की इच्छा, खास करके भगवान के प्रचार संदेश के प्रचार की इच्छा, और वो इच्छा प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से प्राप्त की थी, और वो इच्छा उनके हृदय में थी और कोई भी इच्छा नहीं थी। और उनके परिवार था, उनके बिजनेस था, वो सब इच्छाएं प्रभुपाद जी ने त्याग दी। वास्तव में प्रभुपाद जी उन चीजों से आसक्त नहीं थे, पर क्योंकि भक्तिदास ठाकुर से मिलने के पहले वे गृहस्थ थे तो प्रभुपाद जी कभी गैर जिम्मेदार नहीं हुए, उन्हें अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी जितनी हो सकती थी उतनी पूरी की। और फिर हमेशा प्रभुपाद जी जो भगवान अपने गुरुदेव ने जो आदेश दिया है वो उनके हृदय में था, और फिर जब समय आ गया तो अपने अपने हृदय का सारी इच्छा, अपने जीवन की सारी शक्ति उन्होंने वो आदेश को पूरे करने में लगा दी। तो वास्तव में ये सब रामायण की सुंदर लीला जो सुनते हैं हम, इससे हमको एक रस अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसी का वर्णन है, कैसे अलग अलग रसा अनुभव कर सकते हैं। पर वास्तव में इन सब में हम एक चीज देखते हैं सब भक्तों में, कि दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा। प्रभु श्री रामचंद्र सोच रहे हैं, वो भगवान है, वह सोच रहे कि दूसरों को कम से कम दुख पहुंचाऊं, दूसरों को जितना सुख दे सकूं उतना दे सकूं। भरत महाराज भी यही सोच रहे हैं, जो सेवा भाव है यह हम बहुत सुंदर रूप से रामायण के ये चार भाई है सब अपने सब दूसरे की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान भी कितने कृतज्ञ है उस सेवा के लिए, बोल रहे कि मेरे पत्नी के साथ मुझे कुछ मतलब नहीं है, अगर ऐसा भाई नहीं है तो जीवन में कुछ मतलब नहीं है। भरत महाराज के पास राज्य है, पर वो राज्य भरत डिड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंगडम विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ द किंगडम। जो सारी जिम्मेदारियां थी राजा की वो सारी निभाई, पर जो राजा होने के जा रहे जो सुविधाएं मिलती है एक भी सुविधा नहीं स्वीकार की उन्होंने, क्यों, क्योंकि सेवा भाव था। तो ये जो सेवा का भाव है ये अगर हृदय में हमारे प्रवेश कर लेता है तो जो भावनाएं भक्त भगवान के संबंध में महसूस करते हैं वही भावनाएं हम हमारे स्तर में हमारे गुरु के संबंध में गुरुदेव के संबंध में महसूस कर सकते हैं। जो आनंद भक्त को भगवान की सेवा में मिलता है वो एक शिष्य को अपने गुरुदेव की सेवा में मिल सकता है। तो जिस तरह से भगवान को पसंद करके हम देखते हैं रामायण में भक्तों को इतना आनंद आता, उसी तरह से अगर हम हमारे गुरुदेव को पसंद कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को पसंद कर सकते हैं, तो वही दिव्य आनंद की हमें अनुभूति हो सकती है। तो इसीलिए जो भावनाएं हैं वो बड़ी ही सुंदर है, पर ये जो भावनाएं हमारे स्तर पर हम रामलीला कृष्णलीला सुनकर थोड़ी भावनाएं अनुभव कर सकते हैं, पर अगर आप लीलामृत पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी के जो उस समय के शिष्य थे जो प्रधान भावनाएं उनकी क्या होती थी, द जॉय ऑफ प्लीजिंग प्रभुपाद, कि प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करें। प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए भक्त
वो प्रभुपाद बोल देते कि तुम अफ्रीका जाके प्रचार करो, तुरंत तैयार हो जाते अफ्रीका जाने के, तुम पाकिस्तान जाके प्रचार करो, पाकिस्तान जाने का तैयार हो जाते थे। तो मालव कृष्ण महाराज का बड़ा राधा मोहन बस पार्टी था, प्रभुपाद उनको बोले चाइना जाओ, तुम चाइना जाने के लिए तैयार हो गए वो, क्योंकि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने में जो आनंद उनको मिला वो आनंद किसी और चीज में नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि है और उनको प्रसन्न करने में हमें जो भगवत भक्ति का सर्वोच्च आनंद है वो स्तर पे अनुभव हो सकता है। तो वास्तव में हमें जो हायर टेस्ट है, जो ऊंचा स्वाद है, वो भगवान की कथा में मिलता है, पर हम कथा तो 24 घंटा श्रवण नहीं कर सकते, तो हम जब सेवा करते हैं तो वो सर्विस विदाउट अ सर्विस एटीट्यूड बिकम्स अ वर्क। जब सेवा सेवा भावना के बिना होती है तो वो एक बोझा बन जाती है, वो एक नौकरी बन जाती है। पर हम अगर जब सेवा कर रहे हैं, अगर हम स्मरण करते कोई भी सेवा हो, प्रचार हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, टेम्पल क्लीनिंग हो, डीटी वर्शिप हो, प्रभुपाद जी ने स्वयं किया है, प्रभुपाद जी की इच्छा थी ये हो और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए मैं ये कर रहा हूं, तो फिर वो साधारण सेवा जो है जो हम रोज करते हैं वो भी एक दिव्य अनुभूति हमें प्रदान करती है और इसके द्वारा हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं। और जब इस तरह से दिव्य अनुभूति होती है तो वास्तव में कोई भी भौतिक वासनाएं वहां पे आती ही नहीं है और हम भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो जो रामायण की जो लीला है ये अभी हमारे खुद के जीवन में, आई कंक्लूड विद दिस पॉइंट, कि हमें देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो भौतिक भावनाएं उत्पन्न करती है और कौन सी चीजें हैं वो आध्यात्मिक भावनाएं उत्पन्न करती है। और जिन चीजों से भौतिक भावनाएं उत्पन्न होती है, चाहे वो स्त्री हो सकती है, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो पोस्ट हो सकती है, तो उनसे हमें चौकन्ना रहना है हमेशा। और कौन सी चीजों के द्वारा चीज नहीं बोल सकते वास्तव में, क्योंकि जो भी वो चीजें हैं वो भगवान के ही एक प्रकार के रूप है, वो सेवा हो सकते हैं, विग्रह हो सकता है, हरिनाम हो सकता है। कौन सी चीजों से मेरे हृदय में आध्यात्मिक भावनाएं उत्पन्न होती है, मतलब कौन सी चीजों के द्वारा, कौन से कार्यों के द्वारा, कौन से अनुभवों के द्वारा मेरे जो दिव्य अनुभव, दिव्य भावना है मेरे हृदय में जागृत होती है। कुछ भक्तों के लिए वैष्णव गीत होते हैं, वैष्णव गीत अगर हम गाते हैं, चिंतन करते हैं उनमें, तो बहुत शुद्धिकरण होता है, बहुत दिव्य भावनाएं भी हमें महसूस होती है। कुछ भक्तों के लिए वो भगवान की कथा सुनने में हो सकता है, विग्रहों की सेवा में हो सकता है, और खासकर प्रचार में जब हम देखें कि दूसरे लोग, खासकर अगर हम प्रचार करते हैं, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भौतिक जगत में पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, वो बाद में भक्त बन जाता है और आनंद से कीर्तन में नाचता है, गाता है और प्रसन्न हो जाता है, तो उससे जो आनंद मिलता है वो आनंद जो है भौतिक जगत की कोई भी चीज उससे तुलना नहीं कर सकती है। तो हमें खुद खोजना है कि कौन सी चीजों से मुझे आध्यात्मिक भावनाओं का अनुभव होता है और फिर वो कार्य, वो चीजें, वो सेवाएं ज्यादा जितना हो सकते करने का प्रयास करना चाहिए। और जितने आध्यात्मिक भावनाएं हमारे हृदय में जागृत हो गए उतने भौतिक भावनाएं हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और फिर वी कैन सेफली, भक्ति सामसुंदर में बताया गया है कि एक स्तर आता है वो कहे स्थायी भाव, भक्ति में प्रगति करते स्थायी भाव पे अगर आ गए, स्थायी भाव मतलब स्थायी रूप से भगवत भक्ति में हमें भावनाएं का अनुभव होने लगता है, और फिर उस स्तर पे आ गए तो लगभग हम माया की जो पकड़ है उसके परे जा जाते हैं। भौतिक भावनाएं आएगी पर वो कभी हमें नियंत्रण नहीं कर पाएगी, वो आएगी और चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी, और एक स्तर आएगा जब वो आएगी ही नहीं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि वन डे इफ यू जस्ट कीप सर्विंग, आप सेवा करते रहो, एक दिन आप उठ जाओगे और देखोगे कि आप शुद्ध भक्त बन गए, आपके जीवन में, आपके मन में कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो वो स्तर जरूर आएगा, पर तब तक हमें भौतिक भावनाओं से को दूर रखकर आध्यात्मिक भावना जितनी हो सकती है उतना जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। सो मैंने जो कुछ भी बताया उसमें अगर आपसे किसी के प्रति कुछ अनुचित बोला है, कुछ अप्रियत किया है, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे बैठ के बोलना बड़ा आसान है पर मैं खुद भौतिक वासनाओं के, भौतिक भावनाओं के जकड़ में हूँ, एक साधक हूँ जो संघर्ष कर रहा हूँ अपनी इंद्रियों से, मन से। तो आप सबकी प्रार्थना चाहता हूँ जिससे कि मैं भी थोड़ी भक्त भक्ति में स्थिर हो जाऊं और भगवान की सेवा कर सकूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु की।
श्रील प्रभुपाद की स्कॉन जुहू ब्रह्मचारी भक्तवृंद की जय।